गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे रूप को स्वामी प्राण धन है श्रीला रूप को स्वामी प्राण धन है जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे मधु पंडित प्राण धन है श्रीला मधु पंडित प्राण धन है पेपर जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे श्रील सनातन प्राण धन हे श्रील सनातन प्राण धन हे जय राधा विनोद राधा विनोद राधे जय राधा विनोद राधा विनोद राधे लोकनाथ प्राण धन हे श्रील लोकनाथ प्राण धन हे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जीव गोस्वामी प्राण धन हे श्रील जीव गोस्वामी प्राण धन हे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे श्रील श्यामानंद प्राण धन हे श्रील श्यामानंद प्राण धन हे जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे श्रील विश्व विश्वनाथ प्राण धन हे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र शत श्री श्रीमद His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्री श्री राधा गोविंद देव की श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की श्री श्री राधा मदन मोहन जी की श्री वृंदावन धाम की श्री जयपुर धाम की युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की निताई गौर प्रेमानंदी समस्त भक्त वृंद की श्री श्री गुरु गौरांग की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे तो आज के इस 26 दिसंबर के जयपुर यात्रा के दूसरे दिन की कथा में आप सबका स्वागत है। तो सब लोग समय पर आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य जीवन में जो समय प्राप्त होता है वो हमको भगवान को मिला सकता है, और किसी भी अन्य जीवन में जो काल प्राप्त होता है उस काल से भगवान प्राप्त नहीं होते। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ह्यूमन टाइम मनुष्य जीवन का समय भगवान को प्राप्त करा सकता है, इसलिए आप सब लोग समय पर आया कीजिए। तो हो सकता है कि आप लेट आएंगे तो आप कुछ कुछ मिस कर जाएंगे। तो हमने तीन बातें कल बताई थी, 3 और 5 किसको याद है? 5 बातें कौन सी बताई थी? साधु संग, भगवान नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, धाम वास और डीटी वर्शिप का हिंदी शब्द जो है ना वो यहाँ पर लिया है, अर्च विग्रह सेवा। रूप गोस्वामी ने सुंदर शब्द लिखा है, उसका नाम है मूर्ति श्रद्धान्वित सेवनम। मूर्ति श्रद्धान्वित सेवनम, श्रद्धा के साथ की गई मूर्ति की पूजा सेवा। और तीन बातें कौन सी कही थी? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। इन बातों को हम रोज दोहराएंगे ताकि हमको याद रहेगा। तो आज हम गोविंद देव के मंदिर गए थे, श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय। जयपुर के राजा, पूरे विश्व के राजा, पूरे निर्माण के राजा, सृजन के राजा, गौलोक धाम के राजा श्री श्री राधा गोविंद देव। गोविंद के तीन अर्थ हैं, किसी को पता है? गाय को आनंद देने वाली, गो यानी गाय, गोविंदा, और इंद्रियों को आनंद देने वाले, गो यानी, और एक अर्थ है इंद्रियां, और तीसरा भूमि को आनंद देने वाले गोविंद। और ये गोविंद नाम जो है वो भगवान को तो चिरंतन नाम है, भगवान का वैसे तो चिरंतन है, इटर्नल नेम, लेकिन फिर भी पृथ्वी की लीला पर एक लीला में भगवान को ये नाम दिया गया। किसको पता है? हाँ, जब इंद्र ने भगवान का अपराध किया, वर्षा चलाई बहुत भयंकर नाश करने के लिए, तो उस समय पश्चाताप हुआ बाद में, और इंद्र फिर शरणागत हो गए भगवान से, और उन्होंने फिर भगवान को रिझाने के लिए उनका अभिषेक किया, और अभिषेक किया तो जो जल निर्माण हुआ वो एक कुंड में एकत्र हो गया, उसका नाम हो गया श्री गोविंद कुंड। और उन्होंने अभिषेक करने के पहले भगवान का नाम घोषित कर दिया कि भगवान गोविंद है। तो ऐसे श्री गोविंद देव के मंदिर में हम आज गए। सब लोग बड़े ध्यान से सुनिए कथा, बहुत सुंदर कथा है, बहुत ही सुंदर कथा है। और जो श्रवण इसका एकाग्रता से, भक्ति भाव से, श्रद्धा से और प्रेम से करेगा, उसे अनन्वित अनंत लाभ होगा अपने आध्यात्मिक जीवन में। तो जैसे मैंने कल बताया था कि वज्रनाभ जो अनिरुद्ध के पुत्र थे, उनको भगवान ने ब्रज को पुनर्स्थापित करके भगवान की लीला स्थलियों को, भगवान के मंदिरों को स्थापन करने के लिए आदेश दिया था। तो जब वज्रनाभ रहे तो सब चले गए थे, पांडव भी चले गए थे उत्तर की ओर, बाकी सब लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। उस समय वज्रनाभ ने एक पहले विग्रह बनाए राधा कृष्ण के, और उस समय कृष्ण को देखे हुए केवल एक ही व्यक्ति जीवित थी, उनका नाम क्या था? उत्तरा देवी, जो अभिमन्यु की पत्नी थी। तो उस समय सबसे सीनियर और सबसे मतलब उपस्थित वहां पर, जिसको कुछ पूछ सकते हैं वो अकेली माता जी थी, तो उनको विग्रह बना के दिखाया। तो उन्होंने कहा कि इस विग्रह के जो चरण कमल है वो साक्षात भगवान की तरह है, साक्षात भगवान के चरण कमलों की तरह है। तो उन विग्रहों को उन्होंने नाम दिया राधा मदन मोहन। फिर उन्होंने और एक विग्रह बनाए और फिर उत्तरा को दिखाया, तो उत्तरा ने कहा कि इनका जो वक्षस्थल है, यानी कि गर्दन से लेकर नीचे कमर तक, उसको वक्ष कहते हैं, इसमें पेट भी आता है और छाती भी आती है, तो ये वक्षस्थल जो है वो साक्षात भगवान के वक्षस्थल जैसा है। तो उस मूर्ति को नाम दिया गया राधा गोविंद देव। और तीसरे विग्रह बनाए और वो भी दिखाए, तो उत्तरा ने कहा कि इनका जो मुख कमल है वो साक्षात भगवान से, मुख कमल से मिलता जुलता है, तो इनका नाम रखा गया राधा गोपीनाथ, जिनका भी आप लोगों ने आज दर्शन किया, दर्शन का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये तीनों विग्रह वज्रनाथ जी ने वृंदावन में स्थापन किए। मेरी उम्मीद है कि आप लिखते होंगे और लिखते रहिए उसको। आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए अच्छा है वो, अगर आप लिखेंगे तो, मोबाइल भी लिखिए या तो हाथ में लिखिए, नोटबुक में लिखिए। तो और इस तरह से वज्रनाथ ने फिर बहुत सारे विग्रह स्थापन किए। ब्रज में जितनी जगह भगवान ने लीला किया, वहां पर मंदिर बनाए, जगहों का मेंटेन करने के लिए व्यवस्था किया। लेकिन भगवान की ऐसी लीला है कि कुछ कुछ समय के बाद भगवान अपने स्थान को लुप्त कर देते हैं, अप्रकट कर देते हैं, फिर दोबारा प्रकट कर देते हैं, फिर दोबारा अप्रकट कर देते हैं, ऐसे चलते रहता है। इसका कारण क्या है? केवल भगवान की इच्छा है इसलिए। तो कुछ समय के बाद में ये स्थान सब लुप्त हो गए, सब मूर्तियां भी लुप्त हो गई। तो मदन मोहन जी की कहानी बाद में बताएंगे आपको, जो हमने पहले देखा हुआ है उसके बारे में बताएंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इन्होंने अवतार लिया, आप जानते हैं सब लोग, कृष्ण भगवान कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। राधा रानी का प्रेम का रहस्य जानने के लिए, अनुभव करने के लिए वो भक्त बनकर आते हैं, और उनके भक्त बनने के बाद जो नाम है वो या तो गौरांग महाप्रभु है या तो चैतन्य महाप्रभु है। गौरांग महाप्रभु जब संन्यास के पहले उनका नाम गौरांग था, निमाई पंडित भी था, बचपन का नाम निमाई था, फिर पंडित बने तो निमाई पंडित हो गए, फिर गौरांग महाप्रभु हो गए, फिर संन्यास लिया तो चैतन्य महाप्रभु हो गए। तो उन्होंने संन्यास लेने के बाद में वो जगन्नाथपुरी चले गए, और जगन्नाथपुरी जाने के बाद में वो दक्षिण भारत की यात्रा में चले गए। दक्षिण भारत की यात्रा में पूरी करने के बाद में फिर जगन्नाथपुरी चले गए, और वहां से वो वृंदावन चले गए। थोड़ा आवाज कम करना चाहिए थोड़ा सा। तो जब वृंदावन चले गए तो उस समय तो पूरा जंगल था सब जगह पे, वृंदावन अप्रकट अवस्था में था, कोई स्थान नहीं, कुछ पता नहीं क्या हुआ, बहुत कम कर दिया आपने उसको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो समय चैतन्य महाप्रभु ने श्री राधा कुंड और श्याम कुंड को प्रकट किया। उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु ने इमली तलाश नाम के स्थान को प्रकट किया, क्योंकि तो राधा कुंड श्याम कुंड जो है पूरे भगवान ने जितना सृष्टि निर्माण किया है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो पवित्र स्थान है, पवित्रोत्तम, वो राधा कुंड और श्याम कुंड है, उसको भगवान ने स्वयं प्रकट किया। और रघुनाथ दास गोस्वामी ने फिर उसको जीर्णोद्धार किया, उसको सजाया, बड़ा किया, उसको अच्छी तरह से इसको संवारा, और इमली तला में जाकर भगवान रोज जप किया करते थे। श्री कृष्ण भगवान सांवले रंग के हैं, लेकिन भक्त रूप में जब आए भगवान तो वो गौरांग यानी गौर वर्ण के आए, राधा रानी का वर्ण लेकर आए, राधा रानी का भाव को अनुभव करने के लिए। तो इस भक्त के रूप में वो इमली तला नाम के स्थान जो यमुना किनारे हैं वहां बैठकर जप करते थे, और वहां जप करते समय वो गौरांग वर्ण जो है वो सांवला हुआ करता था, यानी कि कृष्ण नाम लेते हुए वो कृष्णमय हो जाते थे, तो कृष्ण का ही वर्ण धारण करते थे। हमको भी ऐसा जप करना चाहिए। आप लोग में से कितना लोग जप करते हैं? हरे कृष्णा। बाकी लोगों को जप करने के लिए मुहूर्त ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुरंत जप करना चाहिए। जिस समय पता चलता है भगवान के नाम का जप करना चाहिए, उस समय तुरंत ही भगवान के नाम का जप आरंभ करना चाहिए, उसी को भाग्य कहते हैं। अगर आपको पता चल गया है फिर भी आपने शुरू नहीं किया है, इसका मतलब दुर्भाग्य है। तो मनुष्य जीवन भाग्य को प्राप्त करने के लिए, भाग्य को समझने के बाद भी दुर्भाग्यपूर्ण रहने के लिए नहीं है। इसलिए आप लोग सब भगवान का नाम जप कीजिए, और चैतन्य महाप्रभु भगवान स्वयं आकर दिखाते हैं कैसे जप करना है, खुद करके दिखाते हैं। आचार्य का मतलब क्या होता है? जो अपने उदाहरण से लोगों को प्रेरणा देते हैं, वन हु लीड्स बाय एग्जाम्पल, उसको आचार्य कहते हैं। तो भगवान तो परम आचार्य है, आचार्य श्रेष्ठ है भगवान, उन्होंने स्वयं वहां पर बैठकर जप किया और इतना सुंदर जप करते थे, एकाग्र होकर, मग्न होकर, अपने अस्तित्व को भूलकर कि वो कृष्ण का रंग धारण करते थे। और जब बाह्य चेतना में आते थे, एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस, तब वो दोबारा गौर वर्ण के होते थे। और योगायोग की बात ऐसी है कि उसी जगह पर कृष्ण के समय, जब कृष्ण स्वयं आकर बैठकर राधा रानी के चरणों पर ध्यान करते हुए राधा राधा नाम का उच्चारण करते थे, अद्भुत बात है ना, भगवान भी साधना करते हैं, केवल आपको बोलते नहीं साधना करने के लिए, खुद भी साधना करते हैं। और भगवान की साधना क्या है, भगवान राधा राधा जपते हैं और उस समय राधा रानी के चरणों पर अपना ध्यान करते हैं। तो उस समय श्री कृष्ण भगवान सांवले रंग के थे और राधा रानी गौर वर्ण की थी और उनका नाम जप रहे, उन पर ध्यान कर रहे हैं, तो वो स्वर्ण रंग के बन जाती थी। भगवान सांवले रंग के, वो स्वर्ण रंग के एक बार हो गए थे। राधा रानी उन भी दिन को देखकर अचंभित हो गई थी, स्पर्श किया तो फिर सांवले रंग के हो गए। फिर रहस्य पूछा कि ये क्या रहस्य है, तो राधा रानी ने बताया, कृष्ण ने बताया कि आपका नाम चिंतन करते हुए मेरी ये अवस्था हो गई, इतना आपका प्रेम जो है श्रेष्ठ है और मैं भी एक अवतार लूंगा पूरा इस रहस्य को समझने के लिए। इसलिए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया। इसके बाद वापस भगवान जगन्नाथपुरी चले गए और जगन्नाथपुरी में उनको रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आकर मिले। उसके पहले वृंदावन से जब निकले तो वो इलाहाबाद गए। ये सबके पहले रामकेली में भगवान का संपर्क, भगवान की मुलाकात रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से हुई थी। ये सब नाम आपको लिखने हैं, ये एक एक व्यक्ति को मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, उनकी पहचान करा रहा हूँ, कौन है व्यक्ति। छह गोस्वामी हुए हैं, उनमें से प्रधान गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य के रूप में वो है रूप गोस्वामी और दूसरे हैं सनातन गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी भगवान को चैतन्य सनातन गोस्वामी के साथ में रामकेली नाम के प्रदेश में मिले और रामकेली जो है वो वहाँ पर उस समय रूप और सनातन, सकर मलिक और डबीर खास, इन दो पदों पर काम करते थे। ये व्यक्ति के नाम नहीं है, ये पोस्ट के नाम है। एक है प्रधानमंत्री और एक है अर्थमंत्री, सकर मलिक और डबीर खास। और राजा का नाम था नवाब हुसैन शाह। बड़े रोचक बात यह है कि नवाब हुसैन शाह जरासंध के अवतार थे। जरासंध ने गौरांग महाप्रभु की लीला में नवाब हुसैन शाह के रूप में जन्म लिया। मुस्लिम राजा थे वो, अपना राज्य जो है इन दोनों के हाथ में सौंप दिया और राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए हमेशा युद्ध में ही चलते रहे वो, इतना उन पर विश्वास था दोनों के ऊपर। तो चैतन्य महाप्रभु जब रामकेली में आए तो नवाब हुसैन शाह तो बड़े अचंभित हो गए उनको देखकर। खबर मिली उनको दूतों के द्वारा, रूप सनातन वैसे ही वैष्णव थे, जानते थे वो मुसलमान होने पर भी वो उनका बड़ा सम्मान करते थे क्योंकि बड़े कुशल थे अपने काम में। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, पूरा राज्य संभाल के रखा था उन्होंने कुशलतापूर्वक, साथ साथ परम श्रेष्ठ वैष्णव भगवान के भक्त भी थे वो, वैष्णव भक्त थे भगवान के। तो उनके आके सलाह किया, कौन है ये चैतन्य महाप्रभु, तो वो उन्होंने कहा कि नहीं, भक्त है भगवान के, वो संत हैं, कीर्तन करके आ रहे हैं। तो नवाब हुसैन शाह बोलते हैं, आप जो झूठ बोल रहे हो, जिस प्रकार से ये कीर्तन कर रहे हैं, जिस प्रकार से इनका लीला हो रहा है, ये भक्त नहीं है, साक्षात भगवान है, साक्षात अल्लाह है। ये उनको भी अनुभूति हुई जिस प्रकार से भगवान कीर्तन करते आते थे, सब लोग ऐसे जैसे भाव विभोर होकर बेहोश जैसे हो जाते थे, आनंद से विभोर हो जाते थे, सब कुछ भूल जाते थे, शरीर की भावना, मन की भावना जो भी है सब कुछ भूल जाते थे और केवल भगवत परायण होते थे, भाव विभोर होते थे, आनंद से विभोर होते थे। ये परिणाम देखते हुए नवाब हुसैन शाह को भी ये अनुभूति हुई कि ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये भगवान है। तो जब इनकी प्रवेश रामकेली में हुआ और खबर मिली तो रात को, बीच रात में, मध्य रात्रि में, क्योंकि मुसलमान राजा की सेवा में थे, दिन में कैसे मिल सकते हो? रात को मिलने गए और कैसे मिलने गए? दंते तृण धोरी, दांतों में तृण का पत्ता लेकर उनके पास गए। उसका मतलब क्या होता है? भूख लग रही है इसलिए ले रहे क्या? तृण का पत्ता जब कोई दांत में रखता है ना, इसका मतलब मैं आपके चरणों में शरणागत हूं, आई सरेंडर, मेरा कुछ नहीं बचा अभी, मैं आपका हो गया। या तो भय से हो गया या तो प्रेम से हो गया। या प्रेम से अपने आप को भगवान चैतन्य महाप्रभु को समर्पित करने के लिए रूप और सनातन दांतों में तृण धारण करके उनके चरणों में गिरे। उनके साथ में और एक व्यक्ति थे, दो व्यक्ति थे और एक उनके भाई और एक छोटे भाई श्री वल्लभ, जो श्री वल्लभ का बाद में नाम महाप्रभु चैतन्य ने अनुपम रखा। और ये श्री वल्लभ के साथ में उनका छोटा सा बालक था जिनका नाम था जीव। और ये तीनों लोग दांत में तृण लेकर भगवान के चरणों में गिरे। उस समय जीव दूर से देख रहा था, तभी ही छोटे से बालक के मन में ऐसा भाव उत्पन्न आया कि मेरा जीवन मैं चैतन्य महाप्रभु को समर्पित करना चाहता हूं। उसी समय उसने अपना जीवन जो है महाप्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया और आगे जाकर वो जीव गोस्वामी बने, अपने समय के सर्वश्रेष्ठ आचार्य बने वो गौड़ी संप्रदाय के। तो दांतों में तृण पकड़कर जब ये दोनों उनके चरणों में गिरे तो भगवान चैतन्य महाप्रभु इतने व्याकुल हो गए भाव से, बोले बस बस अभी आपका ये जो नम्रता है दैन्य है छोड़ो उसको, अभी आप त्याग करो, मैं आपके दैन्य से इतना विभोर हो गया हूं कि मैं अभी उसको सहन नहीं कर सकता। इतने दीन होकर उन्होंने भगवान से शरणागति स्वीकार की। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, भगवान के सामने जाते ना दीन होकर जाना चाहिए। ये नहीं कि मैं डॉक्टर हूं, व्यवस्थापक हूं, बुजुर्ग हूं, बहुत ज्ञानी हूं, पैसे वाला हूं, अधिकारी हूं, प्रभावशाली हूं, आई हैव गॉट लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस। ये सब हमारी दुनिया की टोपियां हैं, जैसे मैंने कल बताया सब टेम्पररी टोपियां हैं। यही डॉक्टर जो है बहुत पढ़ा लिखा, बहुत सक्सेसफुल, बहुत पैसे वाला, बहुत ही जिसके हाथ से लोगों को गुण आता है, जब 70 साल की उम्र होती है, 75 साल की उम्र होती है, सब भूल जाता है वो खुद को, उसको डॉक्टर का सहारा लेना पड़ता है। और एक समय ऐसा आता है कि वो दुनिया का रहता ही नहीं है, उसको कुछ भी याद नहीं आता है उसके बाद में। मोहम्मद अली भी ऐसे बॉक्सर थे कि इतने जोर से बॉक्सिंग करते थे कि वो उनका हाथ आगे पीछे दिखाई नहीं पड़ता था। जैसे पंखा है ना, अभी देखो तीन पत्ते दिख रहे हैं आपको, तो चालू होता है ना तो आपको तीन पत्ते दिखाई नहीं पड़ते, केवल एक सर्कल दिखाई पड़ता है। इतने फास्ट पंखा घूम रहा है कि आपकी नज़र जो है ना वो उसको पकड़ नहीं सकती। उतनी तेजी से वो अपने बॉक्सिंग करता था कि उसके हाथ आगे पीछे जा रहे हैं ना, कभी समझ में नहीं आता था। वही व्यक्ति एक समय ऐसा आया कि टेबल पर पड़ा हुआ ग्लास भी वो उठाने के लिए असमर्थ हो गया। वो इतना बॉक्सिंग लोगों को दिया और खुद भी खाया तो उसका दिमाग जो है ना डिसइंटीग्रेट हो गया, असंबद्ध हो गया वो पूरा। तो वो अपने हाथ से एक ग्लास भी नहीं उठा पा रहा था, इतना वो अपाइज हो गया। तो कहां गया शक्ति पूरा? समय ने छीन लिया। तो ये सब बात कहां से निकली बताइए? नम्रता के साथ भगवान को मिलना चाहिए, क्योंकि ये सब समझते हो भगवान के पास जाएंगे तो भगवान आपको देख के हंसेंगे, अरे सब तो मैंने दिया हुआ है, मैंने दी हुई उदार चीज के ऊपर इतना गर्व करके मेरे सामने ऐड जमा के आ रहा है, तो हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? इसे भगवान के सामने ऐसे बाजू करके खड़े रहेंगे, देखा कितना शक्ति है मेरे में, तो बुढ़ापे में कहाँ शक्ति होगी अपने पास, खत्म हो जाएगी। तो उदार के प्राप्त किए हुए संपत्ति ऐश्वर्य के ऊपर गर्व करते हुए भगवान के सामने नहीं जाना चाहिए। ये जानना चाहिए कि सब कुछ जो ऐश्वर्य प्राप्त है हमको, जो थोड़ा बहुत जो भी है, ज़्यादा है कम है, जो भी कुछ है, सब दिया हुआ है भगवान का, हमारा कुछ नहीं है, सब दिया हुआ है। और दिए हुए चीज़ पर कोई गर्व नहीं करता है, हम करते हैं क्योंकि हमको पता नहीं है कि दी हुई चीज़ें, हम सोचते हैं कि हमारी मेहनत से बनाया है सारा जो कारोबार है, मैंने एक पसीना खून पसीना एक करके हाँ शुरू से बनाया उसको, ये मेरा साम्राज्य है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन मर जाते हैं तो हमारे साथ में उस साम्राज्य से एक हिस्सा भी लेके नहीं जा सकते। तो ये चरणों में गिरे, भगवान ने उनको उठाया, व्याकुल होकर उठाया, इनकी नम्रता देखकर भगवान का हृदय पिघल गया, गले लगाया उनको, बहुत देर अश्रु बहाए, फिर संवाद हुआ, फिर भगवान ने उनको एक मैसेज दिया। उन्होंने कहा जिस तरह से एक विवाहित स्त्री, हाँ इस उदाहरण का गलत अर्थ मत समझना, हाँ ठीक से सुनना क्या बोल रहा हूँ, जिस तरह से एक विवाहित स्त्री पति के अलावा किसी और मर्द पर प्रेम करती है तो घर का काम इतना अच्छा करती है कि पति को बिल्कुल भी संदेह नहीं होता है कि किसी का और कर इसका दिल लगा हुआ है, और जब पति को संतुष्ट करती है अच्छी तरह से तो पति एकदम गाफिल रहता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, फिर जाके अपने दूसरे व्यक्ति से जाके मिलती है वो। ये संदेश उन्होंने दिया उनको, क्या अर्थ है उसका, अभी तुम मुसलमान राजा के पास काम कर रहे हो, इतना अच्छा काम करना कि उसको संदेश संदेह भी होना नहीं चाहिए कि आप भगवान के भक्त बन रहे हो और भगवान की भक्ति में जीवन समर्पित कर रहे हो। तो उस विवाहित स्त्री को भगवान कहते हैं कि मन तो मर्द के ऊपर है, बाहर के मर्द के ऊपर, लेकिन बाहरी दृष्टि से पूरा कार्य जो है वो इतना कुशलता से कर रही है। उसी तरह से नवाब हुसैन शाह का जो नौकरी है फिलहाल एकदम अच्छी तरह से करना, लेकिन हृदय के अंदर जो है ना भगवान कृष्ण के लिए भक्ति जो है वो बनाए रखना, भाव जो है अंदर जो वो भगवान के समर्पित रखना। बाह्य चेतना से राजा को कोई सतर्कता ना हो, हाँ राजा कोई अलर्ट ना हो जाए, इसलिए उनका कार्य ठीक से करना। योग्य समय आने पर मैं बुला लूंगा आपको। तो यथावकाश बड़ी लंबी कहानी है, चैतन्य चरितामृत पढ़िए आप, बहुत ही सुंदर रोचक कहानियां हैं इसके अंदर, हमारे लिए बड़ी श्रेष्ठ बोध दर्शक कहानियां हैं। तो यथावकाश रूप सनातन जो है वो काम पे आना बंद कर देते हैं, और काम पे आना बंद करने के बाद राजा को वो एक बार लौट के आता है युद्ध से, देखता है मंत्री अर्थमंत्री प्रधानमंत्री एबसेंट हैं, और खबर मिलती है कि बहुत दिनों से एबसेंट हैं। तो क्यों एबसेंट हैं, तो कहते हैं कि बीमार हो गए, इसलिए वो सिक लीव पर हैं। तो भी बीमार है मेरा अधिकारी, तो राजा मिलने आता है उनको कि बीमार है बेचारा, मिलना चाहिए। तो क्या देखते हैं, पूरा भागवत का प्रवचन चल रहा है, हे जनता बैठी है, सैकड़ों लोग बैठे हैं, वो कथा सुन रहे हैं, वे कथा कर रहे हैं। तो उनको अरे ये कैसी बीमारी है। तो कथा के बाद पूछते हैं क्या हुआ, तो कहते हैं हमको अभी काम पे नहीं आना है, हम अभी चाहते हैं कि रिटायर हो जाए। बोले कोई रिटायर होने का सवाल नहीं उठा, चलो काम पे, आप बड़े कुशल अधिकारी हो, आप रिटायर नहीं हो सकते, काम संभालो। बोलते नहीं हम नहीं आ सकते, क्योंकि बड़ा प्रेम था उनका, उनके नवाब हुसैन शाह का डबीर खास सकर मलिक से बहुत प्रेम था, आदरपूर्ण प्रेम था। तो प्रेम से उनको वो आग्रह कर रहे हैं, लेकिन ये फिर भी मना कर रहे हैं। तो प्रेम से कहते हैं आपको अरेस्ट कर लूंगा मैं, तो कहते कर लीजिए आपकी इच्छा है। तो सोचते हैं कि मान जाएंगे, लेकिन वो मानते नहीं, फिर उनको एक्चुअली अरेस्ट कर देते हैं, कैद कर लेते हैं, जेल में डाल देते हैं। जब उनको यकीन होता है कि अभी ये मेरा काम नहीं करेंगे, तो उसके बाद में बहुत समय जेल में रहते हैं। उनके पास में कहते हैं इतना धन था, इतना धन था, और कब की बात कर रहे हैं हम, आज से 450 साल के पहले की बात कर रहे हैं। उसमें सोने की मोहरें हुआ करती थी, और एक एक सोने की मोहरा में तो पता नहीं आप 15 दिन भी जी सकते हो, इतना उस समय कीमत थी उसकी। उनके पास होते ना बोट, जहाज होता ना जहाज, समुद्र में कई जहाज ऐसे होते ना कि उसमें 5-5, 8-8 मंजिल की बिल्डिंग होती है जहाज के अंदर, और वो 5-5 मंजिल की बिल्डिंग लेकर वो जहाज जो है ना वो इस देश से उस देश जाता है। उसमें कई हजारों लोग रहते हैं अपने बंगले की तरह, फ्लैट की तरह, और लेकिन वो बोट में जाते रहते हैं, उसमें खाना पीना रहना सब कुछ, नाच गाना, एवरीथिंग इज देयर। ऐसे बोट से अगर आप सोने की मोहरे भर दे ऐसे बोट में, तो कितनी मोहरे हो सकती है उसके अंदर। ऐसे बोट भरे हुए सोने के मोहरे उनके पास में थी, इतना उनके पास इमेंस वेल्थ था, इतना अनगिनत धन था उनके पास। तो उन्होंने सब धन जो है ना ब्राह्मणों में वैष्णवों में बांट दिया, और फिर बाद में जेलर को ब्राइब किया उन्होंने, मुसलमान था वो, उसको पहरेदार को बताया कि मुझे हज की यात्रा करनी है, तो वैसे भी तो वो मुसलमान के राजा के पास दबीर खास सकर मलिक के रूप में जानते थे, उनको तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी कोई नाम जानता नहीं था, सबके लिए दबीर खास और सकर मलिक थे वो। कह रहे मुझे राजा ने अरेस्ट कर लिया लेकिन हज का मौसम आ रहा है, मुझे हमको हज की यात्रा करनी है। तो वो जेलर प्रभावित हो गया, उसका हृदय पिघल गया, उसको कुछ सोने की मोहरा दिया और रूप गोस्वामी भाग गए। उसके बाद में सनातन गोस्वामी भी भाग गए थोड़ी देर के बाद में, जंगल के रास्ते से भागे। और फिर ये भगवान चैतन्य महाप्रभु को इलाहाबाद में मिले। अभी समझ में आया कहानी, भगवान चैतन्य महाप्रभु वृंदावन से इलाहाबाद गए तो रूप गोस्वामी उनको इलाहाबाद में मिले। रूप गोस्वामी को भगवान ने दश अश्वमेध घाट नाम का एक प्रसिद्ध घाट है आज भी, जो त्रिवेणी पर है, गंगा जमुना सरस्वती के संगम पर है, वहाँ पर भगवान चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी की ऐतिहासिक मुलाकात हुई, ऐतिहासिक संवाद हुआ। 9 दिन तक भगवान ने लगातार उनको शिक्षा दी। फिर वहां से वाराणसी गए भगवान और वाराणसी में भगवान सनातन गोस्वामी को मिले। उसका कारण यह था कि सनातन गोस्वामी कुछ देर बाद निकले और कुछ देर बाद पहुंचे और वाराणसी पहुंचे बनारस, जहां पर 2 महीने तक भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उनको शिक्षा दिया। वो जो शिक्षाएं हैं लिख लीजिए, उस वो किताब है चैतन्य शिक्षामृत, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। इस किताब में विस्तार रूप में वो शिक्षाएं दी हैं श्री श्रील प्रभुपाद जी ने, बहुत सुंदर। तो वाराणसी में 2 महीने तक सनातन गोस्वामी को संबंध ज्ञान दिया उन्होंने, संबंध के विषय में, जो मैंने आपको बताया ना संबंध, उसके विषय में ज्ञान दिया। और रूप गोस्वामी को अभिधेय के विषय में ज्ञान दिया। अब ये संबंध क्या है मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो ये ज्ञान देने के बाद में दोनों को आदेश दिया उन्होंने, कॉमन आदेश दिया, यह है कि आप वृंदावन चले जाओ और वृंदावन में जो लुप्त स्थान है उनको प्रकट करो, उसके बाद में वहां पर विग्रहों को स्थापन करो, उसके बाद में शास्त्रों का बहुत गहराई से अभ्यास करो और शास्त्रों पर आधारित ग्रंथ लिखो जो आज के यानी उस समय के लोगों को समझ में आ जाए, इस भाषा में लोगों को समझाओ ग्रंथ के रूप में। तो एक बताया लुप्त स्थानों को प्रकट करो, एक बताया मंदिरों की विग्रहों की स्थापना करो, मंदिर स्थापन करो, तीसरा बताया कि शास्त्र लिखो और चौथा बताया कि वैष्णव सदाचार क्या होता है, कैसे व्यवहार करना चाहिए उसके बारे में लोगों को समझाओ, गुरु बनो आचार्य बनो। तो उसके बाद ये दोनों वृंदावन आए और वृंदावन में लुप्त स्थान प्रकट करने के लिए बहुत प्रयास किया उन्होंने। ऐसे कहा गया कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी वृंदावन में आने के पहले लोकनाथ गोस्वामी वृंदावन में आए, उसकी कहानी मैं आपको राधा विनोदी लाल मंदिर के बारे में जब कथा करूंगा तो बताऊंगा। तो लोकनाथ गोस्वामी भूगर्भ गोस्वामी पहले आए और उसके बाद में रूप सनातन आए। उन्होंने वृंदावन में सब जगह ढूंढा कि गोविंद भगवान की मूर्ति कहाँ है, ब्रजवासियों का घर घर में ढूंढा, सब मंदिरों में जा जा के ढूंढा कि शायद लोगों को पता नहीं होगा इसलिए छोटे मंदिर में कहीं होंगे, सब मंदिर छान मारे, सब ब्रजवासियों के घर घर में झोपड़ी में जाकर भी देखा कहीं गोविंद जी के विग्रह हैं क्या, कहीं भी नहीं मिले उनको, बिल्कुल लुप्त हो गए। भगवान को तो आदेश है, अभिधेय विज्ञान तो दे दिया उन्होंने और अभिधेय विज्ञान के भगवान राधा गोविंद जी है ये भी उनको पता है। तो फिर वो रोने लगे। वृंदावन में एक स्थान है योगपीठ, हाँ उसको गोमताल भी कहते हैं, गोमटील भी कहते हैं उसको, योगपीठ थोड़ा सा हिलॉक यानी टेकड़ी छोटा सा, उसके पास में बैठकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगे। बहुत दुख हुआ उनको कि मैं भगवान के आज्ञा पालन नहीं कर पा रहा हूँ, भगवान के विग्रह को प्रकट नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत रोए। जब ऐसा विरह होता है ना भगवान से तब भगवान के दर्शन दे देते हैं, है ना, चाह तो नहीं चाहिए भगवान के लिए, हाँ मुझे दुनिया का भी आनंद चाहिए, यहाँ का भोग भी चाहिए और भगवान भी चाहिए, हाँ ठीक है दोनों साथ में चलना चाहिए, ऐसा लोगों का रहता है कि सब कुछ बद्दा करवानू बद्दी जगह जवानू सब है ऐसे, मैं जानता हूँ ये लोगों को, सब जगह जाना चाहिए, क्लब भी जाना चाहिए, पार्टी में जाना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, क्रिसमस में जाना चाहिए, दिवाली में जाना चाहिए, सब जगह जाना चाहिए, सबका आनंद लेना चाहिए, मतलब बंदर की तरह होना चाहिए, कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर। लेकिन भगवान के भक्त बंदर की तरह नहीं होते, भगवान के भक्त जो है ना राजहंस की तरह होते हैं, एक ही जगह पर ध्यान होता है उनका, भगवान के ऊपर। तो फिर इतना विरह हुआ भगवान के लिए, तो एक बालक उनको मिलने आया, बहुत सुंदर बालक था वो। उन्हें कहा महाराज जी क्यों रो रहे हैं आप? तो राधा गोविंद जी को ढूंढ रहा हूँ मैं, नहीं मिल रहे हैं। कहते हैं अरे मुझे नहीं मिले आप, पहले क्यों नहीं मिले आप, मुझे पता है वो कहाँ पर है। अच्छा मैं भी आपको कभी देखा नहीं है। इसे रूप गोस्वामी जी बालक को बोल रहे, बालक बोल रहे मैंने भी आपको देखा नहीं कभी। उन्हें कहा है कि यहाँ पर जो गोमटील है ना, इसको योगपीठ भी कहते हैं, इसके अंदर राधा गोविंद जी हैं। एक दिव्य कामधेनु गाय है जो रोज जाकर वहां पर अपना दूध छोड़ देती है, उसके थन खाली हो जाते हैं। आइए मैं दिखाता हूं। तो वो ले गए उसको, साक्षात रूप गोस्वामी ने देखा कि एक सुंदर सी गोरी सी धवली गाय वहां पर अपने थन से पूरा दूध छोड़ रही है, पूरा अंदर जा रहा है वो टेकड़ी के शिखर से। और वो देखकर रूप गोस्वामी इतने प्रभावित हो गए, उतने वो बालक गायब हो गया, बहुत ढूंढा उन्हें मिला ही नहीं बालक। तो फिर स्वप्न में गोविंद जी आए, वही बालक बनकर आए, कहा कि मैं गोविंद जी हूं, मैंने आपको सुबह आकर रास्ता दिया था। तो वो बेहोश हो गए, अरे मैं भगवान को पहचाना नहीं, साक्षात भगवान गोविंद देव मुझे मिलने आए लेकिन मैं उनको पहचान नहीं सका, कितना दुर्भाग्य हूं मैं। लेकिन स्वप्न में भगवान को आदेश देते हैं कि खुदाई करके मुझे निकालो, मेरी स्थापना करो। तो दुख तो हो रहा है उनका कि मैं भगवान को मिला भी फिर भी पहचान नहीं पाया, लेकिन फिर भी दुख करने का समय नहीं है, भगवान ने आदेश दिया वो पालन करने का समय है। सब ब्रजवासियों को इकट्ठा किया और बड़े प्रेम से खुदाई किया, ऐसा नहीं कि भाई धाड़ धाड़ दो मूर्ति भी टूट जाएगी, अंदर प्रेम से खुदाई किया तो उसमें से बहुत सुंदर राधा और गोविंद जी के विग्रह प्रकट हो गए। केवल गोविंद देव के प्रकट हो गए, राधा जी के नहीं हुए, केवल गोविंद देव के अति सुंदर विग्रह प्रकट हो गए। उसको देखकर रूप गोस्वामी मूर्छित हो गए आनंद से और प्रेम से दर्शन करके। फिर वहीं पर उनको एक पेड़ के नीचे रखकर उनका सेवा आरंभ किया उन्होंने। ये जब घटना हुई कि बहुत समय के बाद काफी प्रयास के बाद अचानक गोविंद जी प्रकट हो गए, तो ये तो चैतन्य महाप्रभु का आदेश था ना, तो चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने खबर भेजी। अभी आप क्या सोचेंगे, कोई लेटर लिख के भेज दिया होगा, कोई ईमेल कर दिया होगा, कोई व्हाट्सएप मैसेज दे दिया होगा, एक सेकंड में इंस्टेंट पता चला होगा, नहीं। उस समय पे तो पोस्ट भी नहीं था, किसी विश्वासु व्यक्ति को पकड़कर आपको हस्तलिखित पत्र देना है, फिर वो चल के जाएगा जहां से आपको पहुंचाना है उसको। तो ये विश्वासु व्यक्ति भक्तों को लिया, पत्र दिया उन्होंने कि बहुत प्रयास के बाद गोविंद जी के विग्रह प्रकट हो गए हैं, एक खुशखबरी उनको देने के लिए एक व्यक्ति को दिया। उस व्यक्ति चल के गया, कहाँ से, वृंदावन से जगन्नाथपुरी, और वहां जाकर उन्होंने महाप्रभु को दिया, तो महाप्रभु भी आनंद से विवर हो गए कि गोविंद जी प्रकट हो गए। तो उस समय, अभी इसकी थोड़ा आप जाएंगे पीछे, हाँ, चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के गुरु थे माधवेंद्रपुरी। तो ईश्वरपुरी ने अपने गुरु जी की बहुत बढ़िया सेवा की थी, श्रेष्ठ सेवा की थी, इसलिए भगवान ने माधवेंद्रपुरी ने उनको आशीर्वाद दिया था कि आप इतने श्रेष्ठ भक्त हो कि आपके भगवान स्वयं आके आपके शिष्य बनेंगे। यथावकाश भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनकर आए, उन्होंने ईश्वरपुर से दीक्षा लिया, उनके गुरु बने वो। तो उस समय काशीश्वर पंडित और गोविंद ये भी माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, ईश्वरपुरी के गुरु भाई थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनकी शिक्षा लिया, इसका मतलब वो कौन हो गए, गुरु भाई हो गए ना, काशीश्वर पंडित और गोविंद। लेकिन ईश्वरपुरी ने उनको आदेश दिया था कि आपको इनकी सेवा में रहना है, वो चैतन्य महाप्रभु मना कर रहे थे उनको कि आप तो मेरे गुरु भाई हो, गुरु भाई और सेवा लेनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें तो गुरुजी ने आदेश दिया आपकी सेवा करने के लिए, तो अब ये तो पेच हो गया ना, मतलब गड़बड़ हो गया। तो कई सीनियर वैष्णवों से उनकी मुलाकात हो गई और उन्होंने चर्चा किया कि क्या करना चाहिए। तो संतों ने उनको सलाह दिया कि जो भी एटिकेट है वो अपनी जगह पर है, लेकिन सभी एटिकेट्स जो होते हैं ना, शिष्टाचार, उसके ऊपर सर्वोच्च जो है गुरु की आज्ञा होती है। गुरु की आज्ञा होने पर शिष्टाचार भी आप चेंज कर सकते हो या तो एडजस्ट कर सकते हो या तो जो भी है। गुरु की आज्ञा ये सबसे बड़ा शिष्टाचार है पालन करना। तो इसलिए इन दोनों को आपकी सेवा में रहना चाहिए। तो उसके बाद में आप जानते हैं कि गोविंद जी और काशीश्वर पंडित भगवान चैतन्य महाप्रभु की निजी सेवा में थे, पर्सनल सर्विस में थे। तो भगवान ने काशीश्वर पंडित को, फिर उनके सेवा में थे तो उनको उन्होंने आदेश दिया कि गोविंद जी किस प्रकट हो गए हैं और गोविंद जी की सेवा के लिए रूप गोस्वामी को कोई सहायक चाहिए, तो अभी आप यहाँ से वृंदावन चले जाओ। तो काशीश्वर को बहुत दुख हुआ, जिसका संग जो है प्रत्यक्ष रूप से भगवान के साथ में है, उसको कहा जाके अभी आप चले जाओ, जीवन का परम धन प्राप्त हो गया, भगवान की सेवा में है वो, चैतन्य महाप्रभु भगवान स्वयं भगवान है। तो बड़ा दुख हुआ उनको, नहीं मैं जा पाऊंगा, आपको छोड़कर मैं नहीं जा पाऊंगा। तो काशीश्वर पंडित को भगवान की इच्छा थी कि वो जाएं और वृंदावन में और गोविंद जी की सेवा करें। तो इनका वैराग्य देखकर भगवान भी व्याकुल हो गए। तो भगवान ने क्या किया, तत्क्षण अपना खुद का विग्रह प्रकट किया और कहा कि ये मैं स्वयं हूं, इस विग्रह का नाम गौर गोविंद है, क्योंकि मैं और गोविंद अभिन्न हूं। इस विग्रह को जब भी आप सेवा करेंगे मैं आपके साथ रहूंगा, जो भी मेरी सेवा कर रहे हैं वो आप इन विग्रह की कर सकते हो, और जो भी भोग लगाएंगे मैं स्वयं उसको प्राप्त करूंगा, जो भी श्रृंगार करोगे मैं स्वीकार करूंगा, जो भी सेवा करोगे स्वीकार करूंगा। तब जाकर थोड़ी सांत्वना हुई और काशीश्वर जो है वो विग्रह लेकर वृंदावन की ओर चले। फॉर टाइम बीइंग बताता हूँ आपको, आपने देखा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अब 29 तारीख को दोबारा हम जाएंगे एकादशी के दिन, मंगल आरती राधा गोविंद जी की, तब दोबारा एक बार देख लेना। हाँ, राधा गोविंद जी के, गोविंद जी के राइट साइड में नीचे एक छोटी सी मूर्ति है, इधर भी है ना, वो देखो, देख रहे हैं, वो गौर गोविंद है, वो काशीश्वर पंडित के द्वारा सेवित हैं। तो उन्होंने गोविंद जी के नीचे ही उनको रखा, जब वो वृंदावन पहुंचे उस विग्रह को उधर रखा और गोविंद जी के साथ में रूप गोस्वामी की सहायता में उनकी भी सेवा करने लगे वो। उसके बाद में वाराणसी में जब चैतन्य महाप्रभु थे तब तपन मिश्रा के घर में उन्होंने भोजन किया था। तपन मिश्रा बड़े श्रेष्ठ भक्त है भगवान के, उनका एक पुत्र था रघुनाथ, वो रघुनाथ भी जब चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में निवास किए, सनातन गोस्वामी को 2 महीने का उपदेश किया, तपन मिश्रा के घर में भोजन किया, वहाँ निवास किया, बहुत भक्तों को मिले, बहुत लीला किया, तो रघुनाथ बालक थे वो बहुत आकर्षित हो गए, उन्होंने अपना जीवन महाप्रभु को समर्पित किया और महाप्रभु के आदेश से वो भी 6 गोस्वामी से 1 गोस्वामी बने, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भी फिर गोविंद जी की सेवा में वृंदावन में आए और वो गोस्वामी रघुनाथ भट्ट और काशीश्वर पंडित, इन्होंने मिलकर गोविंद जी का सेवा किया। तो उस समय आप जानते हैं जयपुर में बहुत राजपूत राजा थे, वैष्णव राजा, और राजा जयसिंह उस समय बहुत प्रसिद्ध थे। उन्होंने सोचा कि गोविंद देव प्रकट तो हुए हैं वृंदावन में लेकिन राधा रानी प्रकट नहीं हुई है, तो उन्होंने 2 विग्रह बना के भेजे। उस समय तक मदन मोहन जी प्रकट हो गए थे, जो कहानी बाद में बताएंगे आप। तो मदन मोहन जी और गोविंद जी दोनों प्रकट हो गए हैं, सनातन गोस्वामी जी मदन मोहन जी की सेवा कर रहे हैं, रूप गोस्वामी जी गोविंद देव की सेवा कर रहे हैं, लेकिन दोनों को राधा रानी नहीं है। तो उन्होंने 2 राधा रानी के विग्रह बनाए, उनको कैसे प्राप्त हो गए वो, ऐसे बनाए नहीं, कहते हैं कि उनको प्रकट हो गए उनके लिए। उन्होंने दोनों विग्रहों को मदन मोहन जी गोविंद जी के लिए भेज दिया जयपुर से, और जब वो रास्ता में थे तो उस समय स्वप्न में राधा रानी आई सनातन गोस्वामी के, और राधा रानी ने कहा कि जयसिंह को ठीक से पता नहीं है लेकिन दोनों में से एक मैं हूं और एक मेरी सखी ललिता देवी है, दोनों राधा रानी मेरे विग्रह नहीं है, एक मेरा विग्रह है और एक ललिता देवी का विग्रह है, तो ये दोनों मदन मोहन जी के पास जाकर आप स्थापित करना। तो फिर वो विग्रह जो है वो मदन मोहन जी के पास आए और एक ललिता देवी और एक राधा रानी के रूप में, राधा रानी लेफ्ट साइड में, ललिता देवी राइट साइड में, थोड़ी छोटी राधा रानी, छोटी छोटी सी ललिता देवी, नहीं नहीं उन्होंने कहा कि जो बड़ा विग्रह है वो ललिता देवी है क्योंकि वो मेरे से सीनियर है, बड़ी है मेरी से, और छोटा सा विग्रह जो है, छोटा सा मतलब बहुत छोटा नहीं, थोड़ा छोटा सा, वो मैं हूँ। तो छोटा विग्रह मदन मोहन जी के लेफ्ट में स्थापन किया गया और थोड़ा बड़ा विग्रह मदन मोहन जी के राइट में स्थापन किया गया ललिता के रूप में। विजय सिंह जी को ये खबर मिली तो बहुत आनंद हुआ कि अरे राधा रानी ने स्वयं आकर दर्शन दिया, आदेश दिया, लेकिन दुख भी हुआ, अरे गोविंद जी को तो अभी तक राधा रानी का विग्रह प्राप्त नहीं हुआ है। तो उस समय नित्यानंद प्रभु की पत्नी थी जाह्नवा देवी, वो जाह्नवा देवी वृंदावन में आई थी और मेरे ख्याल से स्वप्न जो जाह्नवा देवी को दिया गया, तो जाह्नवा देवी वृंदावन में थी और जयसिंह राजा ने जाह्नवा देवी के नाम से ही विग्रह भेजे थे क्योंकि जाह्नवा देवी नित्यानंद प्रभु की पत्नी थी। और चैतन्य महाप्रभु के बाद नित्यानंद प्रभु भी जब पधार गए अपने धाम में तो जाह्नवा देवी आचार्य बनी सब गौड़ीय वैष्णवों की, और उन्होंने सोचा था कि ये विग्रह होने चाहिए, तो जयपुर के राजा ने दो विग्रह भेज दिए थे, तो उनको राधा रानी ने स्वप्न दिया था, तो उन्होंने फिर वो मदन मोहन जी को स्थापन किया। फिर जयसिंह राजा ने दो और विग्रह भेजे, एक भेजा विग्रह एक्चुअली, और विग्रह स्थापन किया गया। तो जाह्नवा देवी को लगा कि ये विग्रह बहुत ही छोटा है, गोविंद देव बहुत ही लंबे हैं और राधा रानी बहुत ही छोटी है, तो उन्होंने सोचा कि ये छोटे हैं बहुत, बड़े होने चाहिए विग्रह। तो उस समय उनको लगा कि मुझे ऐसा सोचना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा कुछ सोचना चाहिए, आई शुड नॉट थिंक लाइक दिस, वो छोड़ दिया विचार उन्होंने। रात में राधा रानी स्वयं दोबारा जाह्नवा देवी के स्वप्न में आई, ये जाह्नवा देवी जो है ना वो रेवती जी का अवतार है, बलराम जी की पत्नी रेवती, बलराम जी के अवतार नित्यानंद प्रभु हैं और बलराम जी की पत्नी के अवतार रेवती जी, रेवती जी के अवतार जो है वो जाह्नवा देवी है, और एक है वारुणी देवी जो वरुण देव की कन्या थी, वो वारुणी देवी जो है वो जाह्नवा देवी की छोटी बहन के रूप में वसुंधरा देवी के, वसुधा देवी के नाम के प्रकट हुई थी, नित्यानंद प्रभु की दूसरी पत्नी। एनीवेज तो जाह्नवा देवी को स्वप्न दिया और बताया कि जाह्नवा देवी जो आप सोच रही हैं वो सही है, मुझे भी ये लग रहा है कि मेरा विग्रह बहुत छोटा है, बड़े विग्रह की व्यवस्था होनी चाहिए। तो राधा रानी का आदेश मिला तो फिर जयसिंह राजा को खबर की गई, तो जयसिंह राजा ने फिर और एक विग्रह भेज दिया और फिर वो विग्रह जो है वो विग्रह छोटा था, वो गोविंद देव के, नहीं एम आई मेकिंग मिस्टेक हियर, थोड़ा सा मैं गड़बड़ कर रहा हूँ इधर, कोई बात नहीं। तो राधा रानी का विग्रह फिर स्थापन किया गया, वो कहानी बाद में बताऊंगा, मैं थोड़ा मिक्सअप कर दिया मैंने। तो फिर राधा गोविंद जी का विग्रह स्थापन हुआ, साथ में गौर गोविंद का विग्रह भी स्थापन हुआ, और इस तरह से फिर राधा गोविंद जी के लिए रघुनाथ भट्ट जब भी आए पूजा करने के लिए उनकी, तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी थे ना वो श्रीमद् भागवत को गाने में बड़े कुशल थे, श्रीमद् भागवत अलग अलग छंदों में गाते थे वो, और इतना मधुर गाते थे कि उनका केवल श्रीमद् भागवत गायन सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे, इतने मशहूर थे वो, पद भी बड़ा अच्छा गाते थे, लेकिन श्रीमद् भागवत का जो अलग अलग ट्यून में अलग अलग छंद में गायन करते थे वो अद्भुत था बहुत, उनका गला भी बहुत सुंदर था। तो उनके शिष्य बने राजा अकबर के सेनापति राजा मानसिंह, राजा मानसिंह नवरत्नों में से एक थे अकबर के दरबार में, उसमें वो भी थे तानसेन गायक, स्वामी हरिदास के शिष्य थे वो। तो कहते राजा अकबर ने भाई थोड़ा सा पॉलिटिकली, दिल से नहीं राजकीय दृष्टि से, थोड़ा हिंदुओं को भी प्रमोट किया क्योंकि उनके राज्य में बहुत सारे हिंदू अधिकारी थे। एनीवेज तो राजा मानसिंह रघुनाथ भट्ट जी को मिलने आए, उन्होंने कहा कि हमें कुछ सेवा दो आप। तो रघुनाथ भट्ट जी ने कहा कि गोविंद जी जो पेड़ के नीचे बैठे हैं छोटे से जगह पर बैठे हुए हैं राधा गोविंद जी, उनके लिए मंदिर बनाओ आप। तो फिर उनको लिए मंदिर बनाया गया। कैसा मंदिर बनाया गया? लाल पत्थर में 7 मंजिल का मंदिर बनाया गया, 7 मंजिल का। और जितने भी खंभे थे उसके अंदर, स्तंभ थे, उस हर एक स्तंभ के ऊपर भगवान की लीलाओं को पत्थर में बनाया गया, क्या कहते हैं उसको, स्कल्पचर बनाया उसका। हर एक खंभे के ऊपर आज भी जाएंगे ना तो आपको एक खंभा मिलेगा ऐसा, तो उसमें ऊपर एक लीला है, बीच में एक लीला है, नीचे एक लीला है। इतना सुंदर मंदिर बनाया कि 7 मंजिल का मंदिर बनाने के बाद में 7वें मंजिल के ऊपर एक बड़ा घी का दीपक जलाया, परमानेंट ज्वाला ऐसी शुद्ध घी में बनाई हुई, और वो दूर दूर से नजर आता था वो ज्वाला, ज्वाला वाला जो ज्योति थी ना, ज्योति घी वाली, इतना अद्भुत मंदिर था वो। तो उसी समय पर औरंगजेब बाद में आया, अकबर फिर चले गए, उनका देहांत हो गया, यथावकाश औरंगजेब नाम का बहुत राक्षसी राजा पैदा हो गया, सब जगह उन्होंने आतंक शुरू कर दिया। तो एक दिन वो अपने आगरा वाले महल में छत पे खड़ा था और देख रहा था यहाँ वहाँ, तो उसको दूर एक मशाल दिखाई पड़ी, तो अपने अधिकारियों से पूछा ये क्या है, ये कहाँ जल रही मशाल इतनी ऊंची, मेरे महल से भी ऊंची, ये कौन सा महल है ऐसा जो मेरे से महल से भी ऊंचा है, जिस पर इतना दीपक जल रहा है वो मेरे महल के छत से भी दिखाई पड़ रहा है। तो वो अधिकारी कहता है कि महाराज ये कोई महल नहीं है, ये हिंदुओं का मंदिर है, राधा गोविंद देव का। बोलते अच्छा चलो वृंदावन में आक्रमण करो, तोड़ दो उस मंदिर को और बाकी सारे मंदिर भी तोड़ दो। तो उस समय पर औरंगजेब ने आक्रमण किया वृंदावन में। जब औरंगजेब ने आक्रमण करने का जब खबर मिली लोगों को औरंगजेब आ रहा है, उसकी खासियत थी वो सब जाकर, सब जगह जाकर पहले मंदिरों को तोड़ता था, और मंदिरों को तोड़ने के पहले मंदिरों के जो विग्रह जो है ना उनको तोड़ता था वो। लोगों को पता था कि आएगा तो पहले मंदिर की मूर्ति तोड़ेगा फिर बाद में मंदिर तोड़ेगा। तो फिर सारे स्वामी इकट्ठे हो गए, उन्होंने चर्चा किया कि अभी आ रहा है वो, तो उन्होंने सब लोगों ने मिलकर भगवान के विग्रहों को शिफ्ट करने का प्लानिंग किया कि उसके आक्रमण होने के पहले ही हम सारे विग्रहों को बाहर कर देंगे वृंदावन के। तो दोबारा जयसिंह राजा ने बोला कि मैं उनको रखूंगा मेरे पास, आप निश्चिंत रहना। इसका भी कारण ये था क्योंकि राजपूत राजा इतने पराक्रमी थे कि औरंगजेब कभी भी उनको परास्त नहीं कर सका, राजस्थान में कभी आके विजयी नहीं हुआ, बहुत कोशिश किया लेकिन बार बार हारता गया वो। नाथद्वार में एक बार औरंगजेब आया था, तो नाथद्वार में जैसे प्रवेश किया उसने आक्रमण करने के लिए श्रीनाथ जी की मूर्ति को तोड़ने के लिए, तो उस समय इतने भंवरे क्या कहते हैं मधुमक्खियाँ हजारों लाखों संख्या में वहाँ पर प्रकट हो गई, और इतनी डसी उसको और उनके सैन्य को, इतनी डसी कि वो कुछ कर ही नहीं सके। मतलब यू नो समझो मेरे सामने ऐसे 1000 मक्खियाँ मुझे काट रही हैं मधुमक्खियाँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, और ऐसे लाखों करोड़ों मधुमक्खियाँ सारे सैनिकों को काट रही है, तो वो शस्त्र क्या चलाएंगे, आक्रमण क्या करेंगे, युद्ध क्या करेंगे। तो उधर ही हार गए वो सब लोग, एकदम हताश हो गए। उस समय औरंगजेब को समझ में आया कि ये जो ठाकुर है ना कोई बहुत मजबूत ठाकुर है, साधारण नहीं है, शायद अल्लाह भी हो सकता है, ऐसा प्रभावित हो गया वो। तो उसने एक सुंदर मणि जो है ना वो श्रीनाथ जी को भेंट दिया और अपनी दाढ़ी से श्रीनाथ जी का सीढ़ी साफ किया उसने पूरा, और वैसे ही चला गया वापस। आज भी इतिहास बताते लोग श्रीनाथ जी के मंदिर की सीढ़ियां औरंगजेब ने अपनी दाढ़ी से साफ किया है। तो ऐसे राजपूत के प्रभाव से, भगवान के प्रभाव से, राजा की शक्ति से या पराक्रम से भी औरंगजेब कभी भी सीरिया में विजयी नहीं हुआ। तो जयसिंह राजा भक्त भी थे और पराक्रमी थे, उन्होंने सब वैष्णवों को सांत्वना दिया, कोई चिंता मत करो, आपके सारे विग्रहों को मैं संभाल के रखूंगा, आप मेरे पास भेज देना। उस समय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर थे वहां पर आचार्य, एक के बाद एक के बाद एक, उनके बहुत वृद्धावस्था में थे, और रूप गोस्वामी उस समय चले गए थे, सनातन जी भी चले गए थे, उनके शिष्य अनुयायी उनकी सेवा कर रहे थे। तो ये सभी विग्रह जो है ना वो एक साथ निकले वृंदावन से। ऐसा भी इतिहास आता है भक्ति रत्नाकर में कि मधु पंडित जो है वो, आपने देखा ना उनका कोट देखा ना आज, वो उस समय उधर थे गोपीनाथ जी की सेवा में। तो जो लोग जा रहे थे गोविंद जी के विग्रह लेकर, गोपीनाथ जी के विग्रह लेकर, उन्होंने गोपीनाथ जी की माला जो है प्रसादी वो सब लोगों को पहनाई, ऐसा भी वर्णन आता है। तो सब वैष्णवों ने प्लान करके फिर ये सारे विग्रहों को बैलगाड़ियों में रात के समय गुप्त रूप में सब निकाल दिया वहां से, और सबसे पहले सब विग्रह जाकर रुके राधा कुंड में, इस कारण कुछ समय रुके वहां पर राधा कुंड में, हॉल्ट लिया उन्होंने। इसलिए राधा कुंड पे सभी गौड़ीय वैष्णवों के मंदिर है, सभी विग्रहों के मंदिर हैं। जहां जहां रुके गोविंद जी रुके वहां पर आज भी राधा गोविंद का मंदिर है। गोविंद जी तो निकल गए लेकिन दूसरी मूर्ति स्थापन की गई और वो घटनाओं को याद करते हुए आज भी राधा गोविंद जी का मंदिर राधा कुंड के किनारे पे है। राधा मदन मोहन जी का है, राधा रमन जी का है, हाँ सब है। राधा मदन मोहन जी है, गोविंद देव है, गोपीनाथ है, श्याम सुंदर जी है, सबके विग्रह उधर अलग अलग जगह पर राधा कुंड के आसपास में है। फिर सब विग्रह निकले और काम्यवन में रुके, तो काम्यवन में भी सभी गौड़ीय वैष्णवों के मंदिर हैं, यहाँ तक कि राधा वल्लभ जी का मंदिर भी है उधर, क्योंकि राधा वल्लभ जी भी उस समय प्रकट हुए थे वृंदावन में, उनका भी संकट था तो उनको भी शिफ्ट किया जा रहा था। राधा रमण देव का मंदिर है लेकिन वो राधा कुंड तक आए और फिर वो छोटे से है ना, कितने से है, छोटे से, तो उनको कहते हैं कि वो बिस्तर के नीचे छुपाया गया उनको। इसलिए मूल राधा गोविंद राधा रमन का विग्रह जो है अभी भी वृंदावन में है। गोकुलानंद जी भी इतने से हैं, उनको भी वहां छुपाया गया तो भी आज मूल विग्रह वृंदावन में है। लेकिन जितने नाम हमने आज गाए ना सुबह अभी अभी कीर्तन में, राधा मदन मोहन, गोविंद, गोपीनाथ, राधा विनोद, राधा दामोदर, ये सब विग्रह जो है यहाँ पर पहुंचे। अभी श्याम सुंदर जी क्यों नहीं पहुंचे, क्योंकि श्याम सुंदर जी भी बहुत छोटे से हैं। मूल श्याम सुंदर जी जो राधा रानी ने स्वयं श्यामानंद गोस्वामी को दिए थे वो भी बहुत छोटे से हैं। आज आप जाते हैं वृंदावन मंदिर में श्याम सुंदर जी के तो बड़े विग्रह दिखाई पड़ते हैं, वो दूसरे गोस्वामी के विग्रह हैं। उनका नाम है ब्रज जनानंद गोस्वामी, उनके वो बड़े राधा श्याम सुंदर जी हैं। जो मूल राधा श्याम सुंदर जी हैं वो छोटे से हैं, वो बाजू में रखे गए हैं, वो भी छोटे से, इसलिए वो भी मूल वहीं पर हैं। और जो बड़े बड़े विग्रह हैं जैसे मदन मोहन जी हैं, गोविंद जी हैं, गोपीनाथ जी हैं, राधा विनोदी लाल जी हैं, वो सब लोग यहाँ पर। फिर क्या हुआ, जब काम्यवन में रुके तो काम्यवन से जब निकले तो वृंदा देवी उनके सपनों में आई। उन्होंने बताया कि गोविंद देव तो भगवान सृष्टि के निर्माण करता है, सृष्टि के राजा हैं, जहाँ पर भी जाएंगे वो राजा ही रहेंगे। एक बीच में मैं आपको कथा बताने को भूल गया, मैं भी आपको बता देता हूं। जब गोविंद देव प्रकट हुए तो कुछ समय के बाद में वृंदा देवी रूप गोस्वामी के स्वप्न में आई और उन्होंने कहा कि मैं वृंदावन की रानी हूं और मैं ब्रह्म कुंड के पास जमीन में हूं, मुझे वहां से खोद के निकालो। तो रूप गोस्वामी बड़ा आनंद हो गया, उन्होंने ब्रजवासियों को लेकर ब्रह्म कुंड के पास खुदाई की। ब्रह्मकुंड कौन सी जगह है, जहाँ पर ब्रह्मा जी ने बछड़े चुराने के बाद में पश्चाताप करके अश्रु बहाए थे, उसका कुंड बनाया ब्रह्मकुंड, बहुत विशाल कुंड है। तो खुदाई में वृंदा देवी का मूर्ति प्राप्त हुई, तो एक विग्रह राधा रानी का और राइट साइड में वृंदा देवी का। इस तरह से वृंदावन में वृंदा देवी, गोविंद देव और राधा रानी के विग्रह स्थापन हुए। फिर सात मंदिर का मंदिर बना, फिर विग्रह निकले। तो जब वो निकले वहां से काम्यवन से, तो वृंदा देवी ने सपना दिया कि मैं तो केवल वृंदावन की रानी हूं और आप गोविंद देव तो विश्व के राजा है, अब जहां पर जाएंगे राजा ही रहेंगे, लेकिन मेरा तो यही क्षेत्र है तो मैं यही रहूंगी। तो वृंदा देवी का जो ओरिजिनल मूर्ति है वो आज भी काम्यवन में है, जहाँ राधा गोविंद जी का मंदिर है, वो चतुर्भुज विष्णु का वेदी है, वो विवाह वेदी, बहुत सुंदर स्थान है। तो वहां पर वृंदा देवी रह गई और गोविंद देव राधा रानी के साथ में आगे चले गए और फिर वो जयपुर में आए। और जयपुर में राधा गोविंद जैसे आए, जयपुर स्वयं भक्त, जयपुर जयसिंह राजा भक्त है भगवान का, उनको सब ज्ञान था कि हमारे परम भाग्य है कि सृष्टि के रचयिता, द किंग ऑफ द यूनिवर्स क्रिएशन, राधा गोविंद देव हमारे पास आए हैं, हमारा कितना भाग्य है। तो जयपुर उस समय भी राजधानी थी राजस्थान की, आज भी राजधानी है, इज दैट राइट प्रभु जी, आज भी राजधानी है ना राजस्थान की। तो जयपुर के राजा जयसिंह उस समय जयपुर में रहा करते थे, लेकिन उन्होंने जयपुर के मध्य में एक भव्य विशाल मंदिर बना दिया। आज भी कितने गेट है प्रभु जी जयपुर के मंदिर में, चार दिशा में चार गेट है, लेकिन एक एक गेट के चार चार पांच पांच गेट है ऐसे। पहला एक गेट है, फिर आप आगे जाएंगे तो और एक गेट आएगा, फिर उसके आगे एक गेट आएगा, फिर आगे एक गेट आएगा। पहले बस से गेट से बस भी जाएगी, बड़ी बड़ी बस, उस समय रथ भी जाया करते थे, उसके बाद में फिर लोग बस पार्किंग करेंगे, फिर कार जाएगी, फिर एक जगह कार भी रुक जाएगी, तो उसके आगे स्कूटर जाएगी, साइकिल जाएगी, एक जगह वो भी रुक जाएगी, और उसके आगे फिर आप पैदल जाएंगे, उसके आगे फिर और एक गेट है, उसको प्रवेश करेंगे, फिर गोविंद जी का मंदिर आएगा। कितना विशाल मंदिर बनाया उन्होंने, इतना विशाल, इतने भव्य गेट है उसके, आज देखकर आपको उस ऐश्वर्य का अंदाज आ सकता है कि कितना भव्य मंदिर बनाया उन्होंने। तो जयपुर में आकर ना राजा जयसिंह की चेतना को समझना बहुत जरूरी है कि क्या भाव था उसका। उसने अपने महल को बड़ा नहीं बनाया, उसने गोविंद देव के मंदिर को बड़ा बनाया, इतना भव्य बनाया कि सब लोग जयपुर को गोविंद देव के मंदिर से ही जाने, जयसिंह से नहीं जाने, जयसिंह के महल के नाम से नहीं जाने, लेकिन जयपुर जो है वो गोविंद देव के नाम से प्रसिद्ध होना चाहिए। इस भाव से उन्होंने ये मंदिर बनाया, और यही हमको सीखना है जिंदगी में। जैसे हमारे प्रभुपाद जी थे, हाँ, उन्होंने क्या नाम दिया संस्था को, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना मूल संघ। प्रभुपाद संघ नहीं बनाया उन्होंने, बाकी आप देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बाकी आप जितने भी बड़े बड़े संप्रदाय हैं भारत में, वो सब उनके गुरु के नाम से बने हुए हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या नाम फेमस किया, हरे कृष्णा। लोग क्या बोलते हैं, दीज आर हरे कृष्णस, वो डांस चैंटिंग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रभुपाद जी को जानता नहीं है, उस समय जब थे तो जानते थे, लेकिन आज कोई प्रभुपाद को जानता नहीं है, क्योंकि जानबूझ के प्रभुपाद जी ने कृष्ण को फेमस किया, अपनी संस्था को भी कृष्ण का नाम दिया, कृष्ण भावनामृत संघ, अपना नाम नहीं दिया। अभी हम लोगों ने नाम दिया है भक्ति वेदांत अस्पताल, देखिए, है ना, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जिन्होंने कृष्ण को इतना फेमस किया, वो व्यक्ति कौन थी, उनका जीवन कितना महान था, उनका कार्य कितना महान था, लोगों को पता होना चाहिए। आज उनका परिचय होगा तो उनकी शिक्षा भी प्रसिद्ध हो जाएगी, और फिर उनकी शिक्षा के द्वारा लोग और भक्त बनेंगे। इसलिए आज भक्ति वेदांत अस्पताल, भक्ति वेदांत गुरुकुल, भक्ति वेदांत विद्यालय ऐसे बनते जा रहे हैं। उसी तरह से जयसिंह राजा ने जयपुर में सबसे बड़ा स्थान गोविंद देव का मंदिर बनाया, केंद्र स्थान, न केवल शहर का केंद्र स्थान, जीवन का भी केंद्र स्थान बनाया, कार्य का भी केंद्र स्थान बनाया, अपने भजन का भी केंद्र स्थान बनाया, भक्तिमय चरित्र का केंद्र स्थान बनाया। और ये हमको सीखना जरूरी है, हाँ, केवल ऐसे प्रवचन करने से बोलने से कुछ नहीं होता है, अपने जीवन प्रत्यक्ष जीवन में हमको भगवान को केंद्र स्थान में रखना चाहिए, तब हमारा जीवन सफल है। इस तरह से उनका राजा होना भी सफल हो गया, क्योंकि राजा के पास बहुत संपत्ति होती है, वो कुछ भी कर सकता है, 50 कन्याओं को शादी करके राजपत्नी बना सकता है, 50 जगह महल बना सकता है, 50 किले बना सकता है, हाँ, हजारों किलो की ज्वेलरी बना सकता है रानियों के लिए, अपने लिए, इतना रिसोर्स राजा के पास होता है। लेकिन जब राजा भक्त होता है तो सारा संपत्ति ऐश्वर्य जो है वो भगवान की सेवा में लगा देते हैं। आमतौर पर राजा जब कोई बनता है ना, तो उसको अपने संपत्ति पर इतना गर्व होता है कि वो भोग लेने में लग जाता है, यहाँ तक कि इंद्र भी जो है वो भोग से लिप्त हो जाता है। इंद्र देवता है, वो देवेंद्र है, राजा देवताओं का राजा है, वो भगवान का आश्रित है, भगवान का कृपा पात्र है, फिर भी ऐश्वर्य प्राप्त करने के बाद भगवान को भूल जाता है वो, कई कथाएं आती है उनकी। लेकिन जयसिंह राजा का उदाहरण जो है ना, बड़ा श्रेष्ठ उदाहरण है कि अपने पास, अभी आपने सुबह यज्ञ किया ना, उसमें क्या बताया, हे लक्ष्मीपति, जो भी हमारे पास धन है वो आपकी सेवा में सुरक्षित रहे। क्यों बोला हमने ऐसा, क्योंकि आमतौर पर लक्ष्मी जब आती है तो हम अपने भोग के लिए उसको लेने का प्रयास करते हैं, वी वॉन्ट टू एंजॉय अवर सेल्फ, मुझे भोग मिलना चाहिए, ये धन संपत्ति से मुझे कुछ अच्छा खाने के लिए, अच्छा पहनने के लिए, अच्छा सुनने के लिए, अच्छी जगह घूमने के लिए, अच्छा रहने के लिए घर होना चाहिए, अपना सोचते हैं हम। आप भी, हम लोग सोचिए, अभी हम लोग भगवान का दान देते हैं, जन्माष्टमी को देते हैं, कभी कभी देते रहते हैं, अपने इनकम का कितना परसेंट देते हैं, बहुत छोटा सा देते हैं, और बहुत ज़्यादा हिस्सा अपने के लगते हैं। जब अपनी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, या अपने घर के लिए कुछ खरीदने को निकलते हैं ना, ढेर सारी खरीदी कर देते हैं। जन्माष्टमी का समय आता है तो 15 दिन तक सोचते हैं, कितना दूँ, कितना दूँ, कितना दूँ, कितना दूँ, ज़्यादा तो नहीं है, इतना तो ज़्यादा नहीं है, थोड़ा कम देना चाहिए, थोड़ा अभी आगे सेविंग करना पड़ेगा, फिर बीमारी होगी तो क्या होगा, ऐसे करते 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 एक फिगर पे आ जाते हैं, कम 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 करते करते। भक्त लोग बोल रहे हैं प्रभु जी आपसे तो कम से कम इतनी उम्मीद है, तो बोलते हैं फिर वो सोच सोच के 10 दिन के बाद में बोलते हैं कि इतना चेक दे देता हूँ। और जब खुद की शॉपिंग को निकलते हैं तो 2 शर्ट खरीदने को निकलते हैं तो 10 पैंट और 20 शर्ट लेके आ जाते घर में। मैं मेरी कहानी बता रहा हूँ, आपकी कहानी बता रहा हूँ, मैं खुद की कहानी बता रहा हूँ। मैं ऐसे एक बार 2000 रुपये का कूपन था मेरे पास, उसको खर्च करने के लिए दिवाली में मिला था, वो खर्च करने के लिए मैं शॉपर स्टॉप में गया था। 2000 रुपया तो मैं खरीद किया, 8000 और खरीदी किया, 10000 की खरीदी करके घर पे आया मैं। उस दिन में जाकर फोन आता प्रभु जन्माष्टमी आ रही है डोनेशन, तो बोले 1000 एक दे दूंगा। ये हमारी मति है, हमारी प्रवृत्ति है कि खुद के लिए अधिक रखें और भगवान के थोड़ा बहुत दे दे, मिनिमम जितना हो सके उतना दे दो भगवान के लिए। लेकिन जीवन उल्टा होना चाहिए, भगवान के लिए सब कुछ होना चाहिए और खुद के लिए मिनिमम होना चाहिए। टू कीप द बॉडी एंड सोल हमारे ऊपर खर्च होना चाहिए, शरीर और आत्मा को साथ रखने के लिए, जीवन चलाने के लिए हमारे ऊपर खर्च होना चाहिए, बाकी सारा भगवान की सेवा में होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप सारा चीज उठाकर भगवान को दान दे दो घर के साथ में, नहीं। अपने घर में वैष्णव आते हैं, उनको भोजन करते हुए वही भगवान की सेवा है। यात्रा कर रहे हैं आप लोग, धन लगता है ना उसके लिए, सब कुछ दे देंगे तो यात्रा कैसे करेंगे फिर आप, तो भिक्षा करनी पड़ेगी प्रभु जी यात्रा के लिए। लेकिन ये सब भगवान की सेवा है। लेकिन इसके अलावा इंद्रिय भोग के लिए जब हम करते काम तो फिर हमको वो बंधन में बांध देता है। तो जयसिंह राजा ने ऐसा उदाहरण स्थापन किया है। देखिए आप, केवल मंदिर स्थापन नहीं किया उन्होंने, ऐसा कल्चर यहां पर स्थापन किया है। अभी हम लोग आपको 29 तारीख को एकादशी को वहां पर मंगल आरती को लेके जाएंगे। क्यों लेके जा रहे हैं, दर्शन तो आज हो गया ना, नहीं आपको एक अद्भुत चीज दिखानी है कि मंगल आरती को वहां पर हजारों लोग आते हैं 5 o'clock इन द मॉर्निंग, ठंड के बीच में हम लोग कंबल ओढ़ के रजाई ओढ़ के सोते हैं उस समय, वो तो उजाला होने के बाद में उठते हैं, वही इतनी सर्दी में कौन उठेगा। लेकिन वो जयपुर के मंदिर में कोई टेंपल कमांडर नहीं है जो आपको फोन करके बोल रहा है उठो मंगल आरती आना है, आपका अटेंडेंस होगा तो आपको प्रसाद मिलेगा। कोई कमांडर नहीं है वहां पर, हाँ। लेकिन हजारों लोग वहां पर अपने स्कूटर मोटरसाइकिल गाड़ी ये वो बस रिक्शा वक्शा करके हजारों लोग सुबह 5 बजे खड़े होते हैं वहां पर, आपको जगह नहीं मिलेगी खड़े होने के लिए, इतनी भीड़ होती है वहां पर। पता नहीं फिर चले जाते हैं, फिर धूप आरती में वापस हजारों लोग आते हैं और अधिक संख्या में आते हैं। फिर उसके बाद में श्रृंगार दर्शन जो हमने आज किया उसमें भी और ज्यादा संख्या में आते, फिर राजमहल में और ज्यादा संख्या आते, और शाम को 5000 लोग खड़े रहते हैं। ऐसा नहीं कि दिवाली है अभी कोई जन्माष्टमी चल रही है उत्सव चल रहा है, ऐसे नहीं, ये हर रोज की कहानी है। और कितना प्रेम से परिक्रमा देते हैं, कितना प्रेम से प्रार्थना करते हैं, कितना गीत गाते, देखो आप गोपीनाथ के मंदिर में क्या सुंदर गीत गाया माता जी ने बन के, पहले भी गा रहे थे बाद में भी गाया, मंदिर बंद हो गया फिर भी गा रहे हैं बैठ के, इतना सुंदर मधुर प्रेम से गीत गाते रहते हैं। तो यहाँ का जयपुर का जो कल्चर है वो जयसिंह राजा जाके अभी कई सैकड़ों साल हो गए, फिर भी जयसिंह राजा ने अपने राजा होते हुए अपनी प्रजा को जो कल्चर दिया था, जो स्थापन किया कल्चर, वो आज भी आपको दिखाई पड़ रहा है। कुछ ना कुछ तो कम तो हो गया होगा ना समय के अनुसार, लेकिन उस समय कैसा होगा जब जयपुर राजा में जयपुर भगवान आए यहाँ पर, तो कैसा कल्चर था वैष्णव कल्चर। खास करके हमने भी जितना भी यहाँ पे लोगों से इंटरेक्शन किया ना, सब लोग बड़े प्रसन्न हैं यहाँ पर, बड़े शांत हैं, संतुष्ट हैं, कोई झगड़ा नहीं करता है, कोई चीटिंग नहीं करता, रिक्शा वाला टैक्सी वाला ये वाला वो वाला कोई, सब शांत है, कुक्स जो है शांत है, सब लोग एकदम बड़े प्रेम से काम करते हैं। जैसे हम हमारे मित्र जो है जयेश जी की शादी में आए थे, हाँ जयपुर में, तो उधर मुझे लगा कि अरे ये तो भोग बन रहा है तो मुझे आके भोग लगाना चाहिए, क्योंकि वो कौन कर रहा है पता नहीं कौन कर रहा है, मुझे करना चाहिए, मैं अभी फ्री हूँ। तो मैं किचन में गया जहाँ पर इनका रसोई बन रहा था, हाँ, तो किचन में जाके क्या देखा, अद्भुत प्रकार की मिठाइयाँ बन रही थी, अद्भुत प्रकार के व्यंजन बन रहे थे और बड़े प्रेम से बनाए जा रहे थे। और मैं चीफ कुक से मिला, उसने मुझको मैंने कहा कि मुझे ना भोग लगाना है, तो उन्हें कहा आइए अंदर आइए, तो उसने ऑलरेडी राधा गोविंद का फोटो लग के सबको भोग लगाया था ऑलरेडी। सर रूटीन मुंबई में ऐसे होता है क्या, मुंबई में तो टमाटर खाते खाते काटते रहते हैं, बीड़ी पीते पीते शराब पीकर तंबाकू मुंह में लटका हुआ है, ऐसे करके सब्जी बनाई जाती है और वही शादी में खाना होता है, सब लोग खाते रहते हैं उसको प्लास्टिक की थाली में। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा फोटो था उनके पास राधा गोविंद जी का, वो सारा आइटम लगा दिया था, मैंने केवल जाके तुलसी लिया और कटोरियां बदली करके अच्छी कटोरी में डाला और थोड़ा घंटी बजाया मैंने, थोड़े मंत्र बोले, इतना ही फर्क है, लेकिन पहले से भोग लगाया था। फिर मैंने उसको पूछा कि गोविंद जी का मंदिर का विजिट का समय क्या है, तो तुरंत मुझे एक कार्ड भेजा उसने, एक वो व्हाट्सएप पे, बोला ये समय है दर्शन का, जैसे हर समय मैंने बदलता है वो। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको ले जाऊंगा, और मैं उनके साथ में एक बार गया, इन्होंने एक बार दिया दर्शन और मैं एक बार गया। वो कहता है कि मैं कुछ भी हो, कॉन्ट्रैक्ट शादी का, कैटरिंग का हो ना हो, मैं रोज दिन में दो बार गोविंद जी के दर्शन करता हूँ, इमेजिन। और केवल वो कैटर नहीं, यहाँ के लोगों का सबका ये नियम है। कल मैं जब आया यहाँ पर तो मुझे नंदगांव से फोन आया, मैंने बताया ना आपको कि गोस्वामी ने कहा कि हमारी सेवा है, नंद बाबा के जन्म दिवस पे आप आ जाइए। तो मैंने कहा मैं जयपुर में हूँ। तो जयपुर में आप, तो हमारे वहाँ पर एक परिचित हैं, बड़े अच्छे भक्त हैं, वो आपको कांटेक्ट करेंगे, वो आपको प्रसाद खिलाएंगे, उनके पास आप जाइए, वो गाड़ी देंगे, आपको दर्शन कराएंगे, सब घुमाएंगे, सब जगह आपको खातिर करेंगे, आप उनका संपर्क करें। तो उन्होंने बाद में मुझे फ़ोन किया, बहुत प्रेम से आमंत्रण दिया कि आप आइए। मैंने कहा मैं यात्रा में हूँ, मैंने कहा 30-31 तारीख को आऊँगा आपके पास, जब यात्रा चली जाएगी तो मैं 2 दिन वहाँ पर हूँ। तो उन्होंने कहा कि हम रोज मंगला करते हैं, फुल थ्रू आउट द ईयर, 5 बजे, गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो। अभी वो कोई मंदिर के, अच्छा हम कैसे राधा गोपीनाथ के भक्त हैं, वहाँ के दीक्षित हैं, तो अपने मंदिर में जाते हैं, मंगला कभी कभी करते हैं, रोज जाने का प्रयास करते हैं, कभी कभी नहीं होता है, ट्रैवलिंग करते रहते हैं, तो हम तो कम से कम एक मंदिर से अटैच्ड हैं, है ना। वो तो ये शहर के रहवासी है, जयपुर वासी है, वो रेजिडेंट ऑफ जयपुर, कोई उनको कमांडर फोन नहीं कर रहे हैं, कोई अधिकारी फोन नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं मंगला आरती में आ रहे हो, कितना दिन मंगला आरती में नहीं आए आप, हाँ अटेंडेंस क्या होगा आपका, प्रसाद का क्या होगा, कोई कुछ नहीं कह रहा है, अपने ही स्वयं प्रेरणा से रोज मंदिर जा रहे हैं। और कई लोग जो है वो 7, कितने दर्शन होते हैं, झांकियां होती हैं 7 ना, 7 दर्शन होते हैं, 7 झांकियां होती है, एक मंगला झांकी होती है, फिर एक धूप भारती की झांकी होती है, ग्वाल दर्शन कहते हैं उसको, फिर श्रृंगार की झांकी होती है, फिर शाम को एक बार ग्वाल दर्शन होते हैं, रात को शयन दर्शन होते हैं, 7 झांकियां होती है। मेरे ख्याल से 7 बार कपड़े बदले करते हैं भगवान के, 7ों बार श्रृंगार चेंज करते हैं, हमारे मंदिर में दिन में एक ही बार चेंज होता है, गोविंद देव में 7 बार 7 श्रृंगार होते हैं। और इतने प्रेमी भक्त हैं, जैसे एक बार मैं इनकी शादी में जब दर्शन करने गया था ना, तो मैं दर्शन कर रहा था बड़े प्रेम से, तो एक बुजुर्ग व्यक्ति आए, अच्छा कैमरा लेके आए, तो मैं बड़े प्रेम से फोटो निकाल रहे हैं, मैं उनको देखता रहा, कितने प्रेम से फोटो निकाल रहे हैं, इतना मतलब, एक है फोटोग्राफी कि मेरे पास बड़ा कैमरा है तो मुझे आर्टिस्टिक फोटो निकालना, एक है भक्ति भाव से फोटो निकालना कि मैं भगवान का फोटो निकाल रहा हूँ, चेहरे का निकाला और पैर का निकाला, फिर इसका निकाला, हाथ का निकाला, मुरली का निकाला, इसे बहुत सारे मैं देख रहा था कितना प्रेम से फोटोग्राफी कर रहे हैं, और वो भी देख रहे थे कि मैं उनको देख रहा हूँ। तो उनका फोटोग्राफी खत्म हुआ, मुझे बोलते हैं आप रोज दर्शन करना चाहोगे इनका, मैं जरूर करना चाहूँगा, मुझे आपका नंबर दे दो, मैं आपको रोज दर्शन भेजूँगा। जब से आपकी शादी हुई है तब से रोज मुझे राधा गोविंद जी का दर्शन आता है, 6 फोटो आते हैं उसमें रोज, एक चरण कमल का आता है, एक क्लोजअप हाफ में आता है पोर्ट्रेट में, एक राधा रानी के साथ में आता है, एक पूरा भोग के साथ में आता है, पूरा ऐसा 50 भोग लगे हुए हैं उसके साथ में एक फोटो आता है, और एक गौरांग महाप्रभु का फोटो आता है, जो वो रह गया अपना आज थोड़ा बाजू में है, वो आपको, आप सब लोग याद करना जब मंगला में जाएंगे तो उधर बाजू में ही गेट के पास गौरांग महाप्रभु का मंदिर है ऐसे। अभी उनको क्या लाभ है उसके अंदर। अभी आज हम लोग गोपीनाथ मंदिर में गए, जैसे मैं गया उन्होंने मुझे बुलाया ऐसे ऐसे, आ जाओ, क्या नाम है आपका, अरे मैंने आपको पहले भी देखा है ऐसा ऐसा, ये आप मेरा नंबर ले लो। मैंने क्या नाम लिखूं, मतलब मेरा नाम मत लिखो, नाम लिखो गोपीनाथ जी, क्योंकि मैं आपको रोज गोपीनाथ जी का दर्शन भेजूंगा। तो उम्मीद है कि आज से गोपीनाथ दर्शन का सिलसिला भी आरंभ हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी ग्रुप बना दिया है वैसे आते ही वहाँ से, और अभी थोड़ा सा ऐड किया है, बाकी सब लोगों को ऐड करूँगा, तो रोज गोपीनाथ जी का दर्शन अभी आया करेगा। अब उनको उसमें क्या लाभ है, कोई दक्षिणा की अपेक्षा है कि पैसा दूंगा कुछ करूँगा, नहीं नहीं, निरपेक्ष भाव है, कोई पंडागिरी नहीं है, भाई इतना दो उतना दो, चावल दो गाय के लिए दो, इसके लिए दो, ब्रह्मचारी को दो, उधर खाना दो, उत्सव के लिए दो, और वो गौ सेवा का दे दो, प्रसाद के लिए दो, ऐसा कोई व्यवहार नहीं है वहाँ पर, व्यापार नहीं करते वो, आओ दर्शन करो, ये लो तुलसी लो, ये चरणामृत ले लो, प्रसाद ले लो, हमारा फ़ोन नंबर लो, फ़ोन करो, हमारे पास रहने की व्यवस्था है, रहने को आ जाओ। कभी मैं जा रहा हूँ तो बोलते हैं प्रभु जी, आज गोपीनाथ में पूछते हैं प्रभु जी कभी आएंगे दोबारा, तो मेरा तो अभी अगला प्लान तो है नहीं हुआ है, मैंने कहा जल्दी आऊंगा, बोले एक साल में तो आ जाएंगे ना, बोले हाँ कोशिश करूंगा। यही प्रेम है, यही कल्चर है, हाँ स्वार्थी कल्चर नहीं है कि मुझे कितना देंगे, प्रभु जी कितना दान डोनेशन में देंगे, आइए आप 1000 दे रहे हैं या अंदर आ जाइए, आप मैं विशेष प्रसाद देता हूँ, और 2000 दे रहे हैं ये लोग पटका भी देता हूँ। ऐसा नहीं है। जैसे हमारे खंडेलाल जी हैं, जयेश के पिताजी हैं, हाँ हमारे यहाँ पर एक हमारे गुरु भाई हैं, वो भिलवाड़े में रहते हैं, तो भिलवाड़े में रहते हैं तो उनको अचानक ब्रेन हेमरेज हो गया, बहुत भयंकर जगह पे हो गया, मतलब जिंदे रहने की कोई उम्मीद नहीं है, मर ही जाना है उनको। तो मैं उसमें पुणे में था वेकेशन में, तुरंत मैं फ्लाइट पकड़ के उधर जयपुर में एडमिट था, वो एडमिट किया गया था, तो मैं वहाँ पहुँच गया। एकदम अत्यवस्थ अवस्था थी उनकी, से मरने वाले थे, तो मुझे लगा कि इनको तो अभी कुछ कृपा विशेष मिलनी चाहिए उनको। राधा गोविंद जी के धाम में आए, भिलवाड़ा से जयपुर में एडमिट हो गए, फोर्टिस हॉस्पिटल में राधा गोविंद जी के किंगडम क्षेत्र में आ गए, तो उनकी कृपा तो मिलनी चाहिए, लेकिन कैसे मिलेगी अभी। तो मैंने जयेश के पिताजी को फोन किया, मुझे आपका नाम क्या है फर्स्ट, सत्यनारायण एस एन खंडेलवाल, इनको मैंने फ़ोन किया, पहले जयेश को फ़ोन किया, अपने पिताजी को फ़ोन किया, मैंने कहा प्रभु जी वो कोई भक्त हमारे शायद चले जाएंगे, कुछ ना कुछ आप उनको चरणामृत भगवान का महाप्रसादी भगवान का और वस्त्र या जो भी भगवान का मिले ना कुछ चाहिए। तो उस समय वो जयपुर मंदिर का वो रिपेयरिंग चल रहा था, प्रसाद का भी केंद्र चेंज हो गया था, कहीं और शिफ्ट कर देता तो प्रसाद का मिलने का चांस नहीं है, कुछ उत्सव चल रहा था तो पुजारी सब बिजी है, सब सामान यहाँ वहाँ कर दिया है, ड्रेसेस भी सब कहीं रख दिए हैं श्रृंगार के, तो सब कुछ केओस था उस समय। तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ मिलने की संभावना नहीं है, लेकिन प्रभु जी किसी का जिंदगी मौत का सवाल है, तो प्रभु जी खुद गए मंदिर में, खुद पुजारी से बात किया, हमने कहा देना ही है, तो उन्होंने ऐसे विकट समय में भी भगवान का उस दिन का चरणामृत, भगवान का उस दिन का चंदन, भगवान के चरणों की उस दिन की तुलसी, भगवान का वस्त्र, ये सब उधर आके मुझे उस फोर्टिस हॉस्पिटल में आके हाथ में दे दिया। मुझे बता रहे थे कि ये तो हम नहीं करते, ये सब भगवान की कृपा है, उन्हीं वही करा रहे हैं, हम तो कुछ नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं प्रभु जी बैठे हमारे साथ। तो कहने का तात्पर्य क्या है, ये धामवासी का भाव है कि कोई अगर भगवान का कुछ कृपा चाहता है तो मेरे बस में जो भी है मैं कर सकूंगा उसके लिए, और जो नामुमकिन था वो भी मुमकिन हो गया, और उनके वो ऐसे कोमा में है, उनको वो सब कुछ मिला, तुलसी चरणामृत चंदन वस्त्र अत्तर भी मिला, 5 चीज़ें मिली थी उनकी उनके लिए, और इतनी चीज़ें बच भी गई, बोलेगा रोज़ उनको देना, रोज़ सुबह तुलसी आके सर पर रखना उनके, रोज़ चरणामृत का एक बूंद मुँह में डालना, रोज़ आके अत्तर लगाना उनको, ऐसे करके ठीक हो गए वो, आज ऑफिस जाते हैं वो, हाँ ऐसा हो। तो मैं ये जयपुर का जो जयसिंह राजा ने जो कल्चर स्थापन किया है ना उसके बारे में बता रहा हूँ, इसको वैष्णव कल्चर कहते हैं। हम लोग सब लोग भजन करते हैं, जप करते हैं, पढ़ते हैं, और कुछ खाते नहीं हैं, और प्रसाद ही खाते हैं, बहुत सारा हम करते हैं, लेकिन फिर भी वो एक्सटर्नल है। ये सब करने का परिणाम क्या होना चाहिए, आपका वैष्णव व्यवहार प्रकट होना चाहिए। अगर आप सही रूप में भजन कर रहे हो, जो बाहर से दिखाई पड़ रहा है जप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, वो ये साधना के अंग हैं, लेकिन साधना करने का परिणाम क्या होता है, हृदय में शुद्धि हो जाती है, हृदय परिवर्तन होता है, आत्म परिवर्तन, आत्म शुद्धि होती है, और वो शुद्ध आत्मा जो हो गई है उसका व्यवहार अलग होता है, वो वैष्णव व्यवहार होता है। तो आपने कितना साधना किया है ये आपके व्यवहार से दिखाई पड़ेगा। दर्शन खुल गया, हाँ सब लोग भाग गए उधर, बाकी किसी का परवाह नहीं, धक्का बुक्का करके आ गए, मुझे दर्शन मिलना चाहिए बस, ये वैष्णव व्यवहार नहीं है। वैष्णव व्यवहार वो है कि सबको दर्शन मिलना चाहिए, मैं भी दर्शन करूंगा लेकिन सबको मिलना चाहिए, किसी का छीन कर मैं नहीं लूंगा, किसी को धक्का दे के पीछे हटा कर मैं दर्शन नहीं करूंगा, जो बताया गया पालन करूंगा, लाइन में खड़े रहो आगे चलते रहो, नहीं मैं ही खड़ा हूँ, मैं ही ले रहा हूँ, फोटो निकाल रहा हूँ वही खड़ा हूँ, आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, और लोग पीछे खड़े हैं इंतजार कर रहे हैं कब दर्शन होगा मुझे, और हमें उसको कोई परवाह नहीं है, ये वैष्णव व्यवहार नहीं है। वैष्णव व्यवहार जो है सबको सेवा करके फिर बचेगा वो हमको मिलेगा। तो मैंने कहा था कल आपको कि जो सबसे पीछे रहते हैं उनको भगवान देखते रहते हैं, आपको लगता होगा मैं सबसे आगे जाके भगवान मुझे देख रहे हैं, मैं भगवान को देख रहा हूँ, लेकिन भगवान आपके ऐसे व्यवहार से प्रभावित नहीं होते हैं। जब सबको आगे करके पीछे रहते ना भगवान आपके साथ में रहते हैं, क्योंकि वो दासानुदास है, केवल दास नहीं है, एक होता है भगवान दास और एक होता है भगवान दास दास अनुदास। वो भगवान के दासों का भी दास होता है, उसके दास भगवान होते हैं, जो भगवान के दासों का दासत्व स्वीकार करता है उसके दास स्वयं भगवान बन जाते हैं, ये ध्यान रखना। तो भगवान को दास बनाने के लिए नहीं करना है बाय द वे, लेकिन भगवान का ये भाव है कि मुझको जो भजन करता है उसको मैं चाहता हूँ, ठीक है अच्छी बात है वो भजन कर रहा है, लेकिन मेरे भक्तों की जो सेवा करता है, जो भक्तों को प्रसन्नता देता है, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा है, क्योंकि मैं भी अपने भक्तों का दास हूँ, ऐसे भगवान खुद को मानते हैं। जो मेरे जैसा भगवान के मेरे भक्तों का दास बनने का कोशिश कर रहा है वो मुझे बहुत प्यारा है। तो इसलिए भगवान दास बनने का प्रयास मत करो, भगवान दास दास अनुदास बनने का प्रयास करो, और वही वैष्णव आचार्य है, वही हमको सीखना है और वही यात्रा है। अगर यात्रा में हम ये सीख पाएंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे तो सबसे बढ़िया है। तो यहाँ के जो लोग हैं जयपुर के, वो अपने खुद के आचरण से, उनके हृदय के अंदर भगवान की भावना इतनी गहराई में घुसी हुई है कि उनके व्यवहार में आपको दिखाई पड़ेगा कितने सरल हृदय है वो। कोई दुकानदार लालची नहीं है, कोई सब्जी वाला लालची नहीं है, कोई मिठाई वाला लालची नहीं है, कोई दुकानदार कोई व्यवहार वाला लालची, कोई रिक्शा वाला नहीं, सब लोग ऐसे आराम से प्रेम से सेवा करते हैं, कोई झगड़ा मगड़ा नहीं करते हैं। दोबारा आइए बताइए, कभी आएंगे दोबारा, ऐसे पूछते रहते हैं, रिक्शा वाले भी पूछते रहते हैं कभी आएंगे, कहाँ से आए हैं। मैं जब गौरा महापुर के मंदिर में प्रवेश किया तो तुरंत मुझे बोला, प्रभु जी आप आइए, आप कहाँ से आए, मुंबई से, आप बैठे बैठे आप गाइए, आप गाइए। तो आप लोग सब लोग आगे चले गए थे, मैं पीछे था, लेट आया मैं, तो मुझे उन मंदिर में खींच लिया, उन्होंने बैठो आप 15 मिनट के लिए, 10 बजे तक समय हमारा, आप गाओ। तो मैंने गाया तो उन्होंने इतना अच्छा साथ दिया, और गाने के बाद में सब औरतें प्रभु जी सब लोग आए और बोले, प्रभु जी कितना आनंद आया आज, आनंद आया, आप बार बार आइए, रोज आके यहाँ पर कीर्तन कीजिए। तो भगवान ने तो बुला ही लिया, और वो भक्तों ने भी वहाँ के इतने लोकल सब माताएं थी और प्रभु जी थे लोकल जयपुर के, इतना प्रेम से उन्होंने आदान प्रदान भावनाओं को किया, इतना मैं गदगद हो गया देख के। वो उसके बाद में मैं फिर वहां पर आया, वहां पर भी देखिए आप कितने सामने खड़े होकर गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, और वो आज का नहीं है, आज ऐसा नहीं कि भाई छुट्टी का मौसम है, क्रिसमस का छुट्टी है इसलिए लोग गा के गीत गा रहे हैं, नहीं, रोज चल रहा है, रोज एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल दर्शन पे लोग हजारों में आते हैं और गीत गाते रहते हैं, और जब तक भगवान खड़े हैं तब तक खड़े रहते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर दोबारा आ जाते हैं। और आपने ठीक से देखा नहीं होगा शायद, दर्शन खत्म हो रहे हैं ना, बंद हो रहे ना, भाग भाग के लोकल लोग आ रहे हैं, अरे भागो भागो, दर्शन बंद हो रहे हैं, तुरंत औरतें आ रही है, आदमी आ रहे हैं, स्कूटर से आ रहे हैं, साइकिल से आ रहे हैं, हेलमेट लगा के राजस्थानी औरत आ रही है, भाग रही है मंदिर में दर्शन करने के लिए, उनका जीवन ही भगवान है। तो ये राजा जयसिंह को हमें अपना हृदय का जो श्रद्धांजलि है ना, प्रेमांजलि अर्पण करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो जो कल्चर स्थापन किया है वो देख कर प्रेरणा लेने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं टू लर्न। गोविंदों का फोटो तो मोबाइल पे भी रोज आ रहा है, रोज दर्शन करते हैं हम लोग, यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, यहाँ पर आके जय गोविंद जी को देखेंगे ही, बार बार देखेंगे, प्रसाद पाएंगे उनका, लेकिन गोविंद देव के आसपास जो वैष्णव कल्चर बना के रखा है ना, उसको देखने के लिए, एब्सॉर्ब करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, समझने के लिए आए हैं कि वैष्णव कल्चर क्या होता है, जिंदगी वैष्णवों की कैसी होती है और हमें कैसे बनना है। हम तो बम्बैया लोग हैं, हम लोग तो स्वार्थी लोग हैं, हम लोग तो बहुत लुच्चागिरी करते हैं, क्या क्या करते रहते हैं धन के लिए, सॉरी टू से, लेकिन ये बदलना चाहिए, इसलिए हम धाम में आते हैं, देखते हैं कि लोग कैसे जी रहे हैं। तो एनीवेज, राधा गोविंद देव की कथा समाप्त करने के पहले जो विषय है अभिधेय, वो मैं समझाना चाहता हूँ आपको। आपके हमारी यात्रा में 5 और 3 विषय है ना, उसमें से एक विषय है अभिधेय। अभिधेय का मतलब होता है कि भगवान की सेवा में लग जाना, उसको अभिधेय कहते हैं। अभी हम माया की सेवा में हैं, है ना, धन की सेवा में है, पद की सेवा में है, कोई भौतिकवादी लोग हैं, दुर्जन हैं, उनकी सेवा में हैं, अपने स्वार्थ के लिए उनकी भी सेवा कर रहे हैं। विफल से विनु कृपण दुर्जना, जो दुष्ट लोग हैं उनकी भी सेवा कर रहे हैं कुछ अपने पैसे प्राप्त करने के लिए। तो माया की सेवा छोड़कर भगवान की सेवा में आना है, भगवान की सेवा में लग जाना है। उसके पहले भगवान से संबंध जोड़ना है, वो है संबंध, वो मदन मोहन जी हैं, तो कल बताएंगे आपको। और संबंध जुड़ने के बाद में फिर सेवा आरंभ करनी है ना, संबंध होने के बाद में कुछ ना कुछ होता है ना, अभी शादी हो गई, दो परिवार का मिलाप हो गया, तो वहां पर रुकता नहीं हो, फिर दिवाली में मिलते हैं, फिर फराल करते हैं, फिर गिफ्ट देते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलते रहती है। तो कल संबंध होना इंपॉर्टेंट नहीं, शादी हो गया खत्म, उसके बाद पति पत्नी साथ में रहे, बाकी कोई मिलने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। उसी तरह से भगवान से संबंध किया, माया को छोड़ दिया, तो भगवान के संबंध में कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए ना। अगर कुछ ना कुछ चलता नहीं रह गया तो वापस माया की सेवा में जाएगा वो, क्योंकि एक्टिविटी होते ही रहना चाहिए ना। एक्टिविटी के बिना कुछ चलता नहीं है, कार्य के बिना जीवन नहीं चलता। आपस बैठ के ऐसे 70 साल के आगे ऐसा बैठ के रहूंगा बस कुछ नहीं करूंगा, ऐसे हो सकता है क्या? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा आपको, एक्टिविटी इज लाइफ। तो वो भगवान की सेवा में लगना, भगवान की सेवा शुरू करना, उसको अभिधेय कहते हैं। और श्री गोविंद देव हमको अपनी सेवा देते हैं, मदन मोहन जी हमको उनका संबंध देते हैं, उनकी कृपा से संबंध प्राप्त होता है। उसके बारे में विस्तार में चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन गोविंद देव वो संबंध होने के बाद में जीव को अपनी सेवा में लगाते हैं। क्या मंत्र है उनका बताया था आपने? दिव्याद वृंदारण्य कल्प दुर्मादहा श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थ श्रीमद राधा श्रील गोविंद देव पृष्ठालिभि सेव्य मानो स्मरामी। इसका अर्थ यह है कि एक सुंदर कल्प वृक्ष के नीचे, कल्प द्रुम अदहा, द्रुम यानी वृक्ष, कल्प यानी जो इच्छा पूर्ण करने वाला है, काम, काम क्या कहते हैं उसको, व्हाट इज द नेम फॉर कल्प वृक्ष जो सभी का, कल्प वृक्ष कहते हैं उसको। कल्प वृक्ष का मतलब यह है कि उसके सामने आप खड़े रहेंगे तो आपकी सारी इच्छाएं वो पूर्ण कर देगा, दैट इज कल्प वृक्ष। उसको बोलते हैं डिजायर ट्री, तो हमारा एक है ना इस्कॉन डिजायर ट्री, इस्कॉन में भी एक काम कल्प वृक्ष है, सब मिल जाता है उसके अंदर, जो चाहिए वो सब कुछ मिल जाता है वैष्णव सेवा प्रभु की कृपा से। तो ये कल्प वृक्ष है, ऐसे वृंदावन में जितने भी वृक्ष हैं वो सब कल्प वृक्ष हैं। अब जो भी इच्छा करेंगे सब पूरा कर देंगे, ये नहीं कि मुझे गाड़ी दो, मुझे बंगला दो, अच्छी बीवी दो, वो इच्छा नहीं। भगवान के विषय में जो भी इच्छा करेंगे वो सब पूरी कर देते हैं वो। ऐसे कहते हैं कि गोलोक वृंदावन में सब जो वृक्ष हैं, अगर आप आ करेंगे और आपको गुलाब जाम खाने की इच्छा है, जैसे आप दोपहर को खाए ना आपने आज, तो आपके मुंह में गुलाब जाम गिरेगा पेड़ की तरफ से, ऐसे गोलोक वृंदावन में नजारा है। जो चाहे वो, जब चाहे वो, चैतन्य महाप्रभु ने भी भगवान भक्तों ने भक्तों के लिए एक दिन ऐसा आम का पेड़ बनाया, उसी दिन वो आम का पेड़ उनके आंखों के सामने बड़ा हो गया, उसी दिन उस आम को ऐसा फल लगा कि ना छिलका ना गुठली, केवल पल्प। और वो कहते हैं एक साल भर टिका, और कम से कम 200 फल उसको दिन में आते थे एक दिन, और एक फल खाएंगे तो लंच डिनर करने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा फल भगवान, ऐसा पेड़ भगवान ने उस भक्तों के आंखों के सामने पैदा किया, आम का पेड़। आज भी आमघाट नाम से जगह प्रसिद्ध है वो, जहां पर भगवान ने वो पेड़ बनाया था। और ऐसे अनंत पेड़ों से कौलोक धाम भरा हुआ है, एक पेड़ नहीं। तो ऐसा एक पेड़ जो जमुना किनारे है, दिव्याद वृंदारण्य, दिव्य वृंद अरण्य, दिव्य वृंदावन, उसमें कल्पद्रुम अतः, जिसके नीचे कल्पद्रुम यानी कल्प वृक्ष, अध यानी नीचे, क्या है उसके नीचे? श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थ, उसके अंदर एक रत्न से बना हुआ रत्न सिंहासन है, रत्नागार, जैसे कि रत्न का भंडार ही समझ लो उसको, ऐसा एक सिंहासन है रत्नों से जड़ा हुआ है। उस पर क्या हो रहा है? उसे प्रकाश निकल रहा है उस रत्नों से, और उसमें क्या हो रहा है? उसमें युगल जोड़ी विराजमान है, श्री श्री राधा गोविंद देव बैठे हुए हैं, और पृष्ठाली भी सेव्य मानव स्मरा में। क्या हो रहा है उधर? सभी सखियां एकत्र खड़ी हैं, कोई चामर कर रही है, कोई पंखा चला रही है, मोर पंख दे रही है, कोई गीत गा रही है, कोई तंबूल खिला रही है, कोई नृत्य कर रही है, कोई और कुछ सेवा कर रही है, युगल जोड़ी की सेवा चल रही है वहां पर। पृष्ठाली भी सेव्य मानो स्मरामी, मैं उसको स्मरण करता हूं। हमारे गुरुदेव और हमारे प्रभुपाद जी सब आचार्य हमेशा कहते हैं कि जीवन में कुछ भी हो जाए ना, कुछ भी हो जाए जीवन में, जीवन में क्या नहीं हो सकता है, कोई भी कभी मर सकता है, प्रिय व्यक्ति का देहांत हो सकता है, कभी चोरी हो सकती है, कभी आग लग के पूरी संपत्ति नष्ट हो सकती है, कभी आपका गोदाम भरा हुआ है वो जल के नष्ट हो सकता है, कभी सुनामी में भूकंप में जमीन ध्वस्त हो सकता है, ये जीवन में कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। पदम पदम यत विपदम नतेषाम, पद पद पर यहाँ पर संकट है। अभी बैठे हैं, कल क्या होगा पता नहीं। देखो अभी हम लोग जा रहे थे तो वो एक गाड़ी तो 3 लोगों को उड़ाने ही वाली थी, हमारे मैनेजर लोगों को यात्रा की, ऐसे बाल बाल बच गए वो। बाल बाल मतलब क्या? बाल का जितना होता ना जगह, उतने से मृत्यु से बच गए, इसलिए बोलते बाल बाल बच गए। इतना क्लोज थे मृत्यु के। आपकी यात्रा तो पता नहीं होने वाली कि नहीं होने वाली, आई डोंट नो। ऐसे मैंने कहा कि पदम पदम यत पिबतन नतेशाम, ऐसा दुनिया है ये। तो गुरु जी बताते हैं हमारे कि जीवन में कुछ भी हो जाए, आप टूट जाए, हाँ फूट जाए, नष्ट हो जाए, कुचल जाए आप, फिर भी एक सत्य अबाधित है कि उस कल्प वृक्ष के नीचे रत्न सिंहासन पे जुगल जोड़ी विराजमान है, राधा रानी कृष्ण के बाएं साइड में खड़ी है, सब सखियां उनकी सेवा कर रही है, ये चिरंतन काल का सत्य है, ये ऐसे ही रहेगा। और वही हमको जाना है, चाहे भूकंप में नष्ट हो जाए या चोरी करके सब संपत्ति लूट जाए हमारी, या रोग में हम लोग जर्जर हो जाए, कुछ भी हो जाए, या क्या कहते हैं उसको डिवोर्स हो जाए, या दोस्त आपको दगा देगा, ऐसा नौकरी चली जाएगी आपकी, ऐसा क्या क्या जिंदगी में हो सकता है। ये सब कुछ होने के बावजूद भी एक सत्य आबादित है कि राधा रानी कृष्ण के बाएं बगल में खड़ी है, कल्प वृक्ष के नीचे रत्न सिंहासन पर बैठी हुई है और सखियां उनकी सेवा कर रही है। वो हमारा परम लक्ष्य है। जब भी कुछ घटना होती है उस दृश्य का चिंतन करो। दिव्याद वृंदारण्य कल्प द्रुमादः श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद राधा श्रील गोविंद देवौ प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। तो वो सारा दुख होने पर भी आपको दुख छुएगा नहीं, और उस भयंकर विध्वंसक घटना में भी आप शांत रहेंगे, आनंद में रहेंगे। कृष्ण भावना का यही रहस्य है। हाँ, कृष्ण भावना का रहस्य क्या है? कितना भी कुछ भी संकट आ जाए तो केवल दुखी नहीं होना, ये कृष्ण भावना का लाभ नहीं है। दुखी नहीं होना ये एक लाभ है, लेकिन सुखी रहना, आनंद में रहना, दुख की घटना में भी आनंद में रहने का जो प्रोविजन है ना, फैसिलिटी है, वो कृष्ण भावना में है। कृष्ण भावना को प्राप्त करने के बाद में भयंकर विध्वंसक संकट में होते हुए भी आप हंस सकते हो और दूसरों को भी हंसा सकते हो, और आपके मिलने से दूसरों को भी आनंद हो सकता है, और उनको पता भी चलेगा नहीं कि इसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। ये अद्भुत प्राप्ति कृष्ण भावना में हो सकती है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि जीवन में कुछ भी हो जाए, हमेशा कृष्ण भावना में रहो, और आपको जो भी मिले ना उसको भी आनंद दो। आपको मिलने के बाद में किसी को दुख नहीं होना चाहिए, चाहे आप खुद कितने भी दुख में हो, तड़प रहे हो, पीड़ा में हो, डूबे हुए हो, संकट में हो, लेकिन आपको जो मिलेगा उसको उस संकट का नॉलेज नहीं होना चाहिए। अरे ये बहुत संकट में है, बेचारा दुखी है, क्या करें, प्रार्थना करें, इसके लिए मदद करें, नहीं। हमको मिलने के बाद में हमारा दुख लोगों को नहीं मिलना चाहिए, हमारा कृष्ण भावना का जो आनंद है ना वो लोगों को मिलना चाहिए। या आप दिन में ठान लेना। तो वो कैसे हो सकता है? गोविंद देव की कृपा से जब उनकी सेवा आपको मिलेगी गुरु जी के माध्यम से, तो ये सब हो सकता है। ता गोविंद जी से प्रार्थना करो। दर्शन तो किया है, आपके सामने भी है, मन में भी आपके हो सकता है। प्रार्थना करो कि हे भगवान, ये दुनिया की माया की सेवा करने के बजाय आप अपनी सेवा में हमको लगाइए। हम तो पामर हैं, मैं तो कंगाला, हाँ सब, मतलब क्या, दरिद्री है हम सब, हमारे पास कोई ऐश्वर्य भक्ति का नहीं है। आप हमें अपना लीजिए और अपनी सेवा में रखिए, चाहे वो निम्न सेवा दीजिए, एकदम थर्ड क्लास फोर्थ क्लास सेवा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी सेवा में रखिए, बस सेफ रखिए, क्योंकि आपकी सेवा में रहने से ही हम सुरक्षित रह सकते हैं। माया की सेवा में रखने से थोड़ा मजा आएगा आपको, लेकिन बार बार लात पड़ेगी आपको थोड़ा थोड़ा प्रलोभन दिखाई पड़ेगा, पीछे से लात पड़ती रहेगी, कांटों के ऊपर चलने के जैसा माया की सेवा होती है। लेकिन आपके साथ में रहेंगे, आपके चरणों में रहेंगे, आपकी सेवा में रहेंगे, तो माया का भय मुक्त हो जाएगा। कृष्ण सूर्य समा माया होय अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। तो माया के अधिकार से मुक्त होना है तो आपके चरणों का सहारा बहुत जरूरी है। तो हे गोविंद देव, हमें आपकी सेवा में रखिए। जब सेवा करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो गोपीनाथ की कृपा से वो सेवा में हम लोग परफेक्शन प्राप्त करेंगे, और उसको कहते हैं प्रयोजन। प्रयोजन का और भी एक अर्थ है, पर्पज, व्हाई वी हैव कम हियर, क्यों आए हैं दुनिया में, उसका प्रयोजन क्या है? उसका प्रयोजन जो है भगवान की सेवा में परिपूर्णता प्राप्त करना है। To attain perfection in the service to the Lord is the प्रयोजन of life। और वो गोपीनाथ जी देते हैं, इसलिए हम गोपीनाथ जी के पास जाके, मैं बता नहीं पाया कथा आपको, लेकिन आपको प्रार्थना करना है कि जो भी सेवा कर रहे हैं उसमें परफेक्शन होना चाहिए। मतलब क्या, सेवा सब लोग करते हैं, कोई हाइफाई चार्डली करते हैं, कोई इधर उधर दिखे करते हैं, भाई कीर्तन हो रहा है तो कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, वो परफेक्शन नहीं है ना। कीर्तन हो रहा है मतलब दिल जान हृदय मन शरीर आत्मा से हम उनको अपने आप को अर्पण करना है, उसके अंदर पुकारना है उनको। मैंने कितनी बार बोला पुकारो पुकारो, क्यों बोल रहा था? क्योंकि यही मौका है समर्पण करने का। तो कीर्तन सभी कर रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति परफेक्टली कर रहा है, कीर्तन यानी भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर रहा है कीर्तन के माध्यम से, वो परफेक्शन है। वो जो परिपूर्णता है वो गोपीनाथ जी हमको देते हैं। तो गोपीनाथ जी से हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी कुछ कर रहे हैं ना उसमें 100% परिपूर्णता प्राप्त हो जाए, क्योंकि जब वो परिपूर्णता प्राप्त होती है गोपीनाथ की कृपा से, तब जो है उनकी बंसी सुनाई पड़ती है। क्या उनका मंत्र है? श्रीमान रासरसारंभी बंसी वट तटस्थितः कर्षण वेणु स्वनर गोपीर गोपीनाथ श्रीयस्तुनः। वही है भगवान। वो जो भी रत्न सिंहासन में बैठे हैं ना, तो कभी कभी उड़ जाते हैं वो और बंसी वट पर बैठ जाते हैं। एक वट है वहां पर जमुना किनारे, उस पर बैठते हैं और बंसी बजाते हैं। जब वो बंसी बजाते हैं तो सारे उनके शुद्ध भक्त जो है ना, जैसे गोपियां हैं, पागल हो जाती है, एकदम भाव विभोर हो जाती है, भूल जाती है कि वो कपड़ा कौन सा कहाँ पहन रही है, लहंगा जगह ऊपर पहन रही है और फरिया नीचे पहन रही है, और दुपट्टा का लुंगी बना रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, काजल गाल पे लगा रहे हैं, और ऐसा कुछ अद्भुत काम कर रहे हैं, एक ही रिंग लगा रहे हैं और एक हाथ में रिंग लगा के जा रहे हैं, ऐसे कुछ पागल जैसे कार्य करते हैं, तो भाग के वहां पर चले जाते हैं। बंसी वट तटस्थितः, वहां बंसी वट के तले वो बैठे हुए हैं, वो बुला रहे हैं सबको, आ जाओ, क्या कर रहे हो दुनिया में, क्यों माया में भोग लेने का प्रयास कर रहे हो, क्यों ठोकरे खा रहे हो, क्यों धक्के खा रहे हो, छोड़ो सब कुछ, आओ मेरे पास। कॉल अपना रिंग बजता है ना फोन का, तुम लोग क्या करते हैं, सब कुछ छोड़ के वो तुरंत फोन उठा रहे हैं। फोन कितनी देर से बज रहा है, अरे बाप रे, कोई पता नहीं आजकल कैसा हो गया ना, फोन रिंग मतलब टॉप मोस्ट प्रायोरिटी लाइफ का हो गया है। फोन बजा मतलब फर्स्ट इमीडिएटली शुड बी अटेंडेड, चाहे उसमें कुछ यूजफुल हो यूजफुल ना हो, लेकिन फोन की रिंग है ना वो लाइफ की सबसे बड़ी प्रायोरिटी हो गई आजकल। अरे लेकिन एक फोन की रिंग जो है ना वो बहुत जमाने से बज रही है, उसका क्या, वो बंसी बजा रहे हैं, कब से बजा रहे हैं वो, आ जाओ, आ लौट के चले, अभी चलो, अभी लौट के चले, बहुत हो गया अभी यहाँ का भोग लेने का प्रयास, अब चलो, आ अब लौट चले, पुकार रहे वो। लेकिन क्या होता है ना, सुनाई नहीं पड़ता है। क्यों सुनाई नहीं पड़ता है? तुम जो फोन उस रूम में रखा है और ये रूम में कुछ झगड़ा चल रहा है जोर जोर से, तो रिंग सुनाई पड़ेगी क्या आपको? उस रूम में बजा हुआ फोन की रिंग तब सुनाई पड़ेगी जब ये रूम में शांति है, तब जाकर वो रिंग सुनाई पड़ेगी। हम लोग वृंदावन में थे ना एक बार, तो उधर जगन्नाथ घाट कम से कम 2 किलोमीटर दूर है वो जमुना किनारे पे, तो वो 2 किलोमीटर दूर से एक रात को धुन सुनाई पड़ती थी, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, रात को 10 बजे के बाद सुनाई पड़ती थी। तो हमको लगा कि शायद रात को ही कीर्तन करते होंगे, तो एक दिन हम लोग वहां पर गए और पूछा, आप लोग रात को कीर्तन करते हैं? नहीं, 24 आवर्स करते बोलते। अच्छा, तो हमको तो रात को सुनाई पड़ता है, रात से 10 से शुरू करते हैं, 4 बजे सुनाई पड़ता है, बाद में फिर पता नहीं बंद हो जाता है, क्योंकि बाद में आसपास का शोर बढ़ जाता है, इसलिए दूर का आवाज़ सुनाई पड़ना बंद हो जाता है, वो बहुत शोर 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 दिन भर चलते रहता है, कुछ सुनाई नहीं पड़ता है, फिर सब शांत हो जाता है 10 बजे, दोबारा सुनना ही पड़ता है। मतलब वो चल ही रहा है लेकिन आपके आसपास में इतना शोर है कि आपको वो दूर की पुकार सुनाई नहीं पड़ रही है। उसी तरह से अंदर हृदय में काम वासना क्रोध लोभ मोद मत्सर और भोग लेने की इच्छा है और प्रयास, इतना शोर अंदर मच रहा है कि वो मुरली सुनाई कैसे पड़ेगी? कान के पास में लाउड स्पीकर चल रहा है तो आपको मम्मी पुकार रही है, सुनाई कैसे पड़ेगा? तो लाउड स्पीकर बंद होगा तो मम्मी बोल रही सुनाई पड़ेगा। डिस्को में नाच कर रहा है, मम्मी बोल रही है अरे गोपाल खाना खाने को आ जा, डिस्को इतना जोरदार बज रहा है कैसे मम्मी का आवाज सुनाई पड़ेगा? जब डिस्को डांस समाप्त हो गया, लाइट स्पीकर बंद हो जाएगा, तो फिर मम्मी की आवाज़ सुनाई पड़ेगी। लेकिन मम्मी तो पुकार रही है, पहले से ही पुकार रही हो, ऐसा नहीं कि अभी पुकार रही है, अब सुनाई पड़ा आपको, कब से पुकार रही हो आप? जब आपके आसपास का शोर बंद करेंगे ना, तभी वो पुकार सुनाई पड़ेगी आपको। उसी तरह से जब हमारा हृदय शुद्ध होगा और शुद्ध हृदय से आत्मशुद्धि से हम भगवान की सेवा में परिपूर्णता प्राप्त करेंगे, तो सारे शोर खत्म हो जाएंगे, परम शांति हृदय में सारे वासनाएं कि शोर सब खत्म हो जाएगा, फिर वो शांत हृदय में वो मुरली की धुन सुनाई पड़ेगी। हम बोलते हैं अरे मुरली की तान सुनाने को कब आओगे शाम कदम के तले मुरली की। गीत तो गाते हैं लेकिन वो तो परमानेंट बजा रहे हैं, आपको सुनाई कहाँ पड़ रहे हैं। तो वो सुनने के लिए गोपीनाथ जी है। परिपूर्णता देने के बाद में मुरली की तान सुनाई पड़ती है, फिर उसके बाद में दुनिया की कोई चीज अच्छी लगती नहीं है, फिर एक ही चीज अच्छी लगती है, भगवान, उनकी सेवा और उनके भक्त, बस उसी में जीवन मशगूल हो जाता है। तो ये हो गया संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो अभी हमको गोपीनाथ की कथा भी करनी है। तो गोपीनाथ बज्रनाभ ने उनका विग्रह भी बनाया राधा गोपीनाथ जी का, वो स्थापन किया वृंदावन में। लेकिन जब गोस्वामी लोग आए तो गोपीनाथ जी कहीं नहीं थे, तो वहां से मधु पंडित आए, वो मंडली सखी के अवतार थे, कृष्ण भगवान की लीला में मंडली सखी थे वो। वहां पर लिखा था, पढ़ा ना आपने, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, उधर लिखा था नीचे, मधु पंडित कृष्ण भगवान की लीला में मंडली सखी थे। ये कृष्ण भगवान के सखियों में बहुत लेवल होते हैं, एक होते हैं सबसे ऊपर अष्ट सखी, हाँ, उसके बाद में चंद्रावली भी साथ में ही उसके पैरेलल में है, उसके बाद में मंजरियाँ होती हैं, और एक सखी की तीन मंजरियाँ होती हैं, और एक मंजरी के अंदर 1 करोड़ गोपियाँ सेवा करती हैं। तो एक मंजरी के अंदर 3 करोड़ गोपियों का यूथ होता है, यूथ यूथ यानी ग्रुप। अष्ट सखी के अंडर 3-3 मंजरियाँ होती हैं, ललिता के नीचे 3 हैं, रूप मंजरी, लवंग मंजरी और एक है 3, और हर एक के अंडर 1-1 करोड़ है, और उनके अंडर फिर सहचरी होती है, फिर तो उसके अंदर किंकरी होती है, इसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं। वो सब लोग क्या कर रहे हैं, प्रमोशन के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, अभी तो मैं सहचरी हूँ, क्या रे बोर हो रहा है मुझे, अभी मुझे आगे जाना है, मुझे अभी एक दिन सखी बनना है ऐसे कोई प्रयास नहीं कर रहा है उधर। सब लोग अपने अपने स्थान में मस्त हैं, कोई भी आगे बढ़ने के लिए प्रयास नहीं कर रहा है, कोई एग्जाम नहीं दे रहा है, कोई टेस्ट नहीं दे रहा है, कोई जूनियर ऑफिसर सीनियर ऑफिसर बनने का प्रयास नहीं कर रहा है। सब लोग ऐसे करोड़ों और अब्जों की संख्या में हैं, अपने भी जगह पर स्थान थे। मोर भी अपने भगवान के धाम में अपने सेवा में मस्त हैं, कुछ नहीं कर रहा है, आज तो मोर हूँ कल मुझे गोसखी बनना है ऐसे कोई कोशिश नहीं कर रहा है। तो ऐसे ये मंडली सखी राधा रानी के गुथ में यूथ में सेविका है, वो मधु पंडित बनकर आते हैं लीला में चैतन्य महाप्रभु के, चैतन्य महाप्रभु के आदेश से वृंदावन में आते हैं मधु पंडित महाशोय। वो इतने भक्ति में आनंद में थे, इतने भक्ति में मशगूल थे कि उनको दुनिया का भान ही नहीं था, वो दिन रात वृंदावन में गोपीनाथ को पुकारते हुए ढूंढते थे, वो घूमते थे, कोथा है कृष्णा, कोथा है कृष्णा, कृष्णा कोथा है, कहाँ हो आप कृष्ण भगवान, कहाँ हो कहाँ हो, ऐसे करके रोते रोते ब्रज में डोलते थे वो, इस मानो एक पागल की तरह थे। बोले कृष्ण तो 500 साल पहले ही लीला करके समाप्त होकर चले गए ना, 5000 साल पहले, सॉरी 5000 साल पहले लीला करके समाप्त होकर चले गए, किधर है अभी वो, तो आज किसको पुकार रहे हैं। लेकिन भगवान तो हमेशा रहते हैं, कभी कभी शरीर रूप से आके लीला करते हैं, लेकिन हमेशा रहते ही है वो, चिरंतन है वो, हमेशा रहते हैं। तो उनको जिनको दुनिया से पूरी विरक्ति आ गई है और दुनिया के भोगों के विषय में कोई रुचि नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है उनको, केवल भगवान में दिल लगा हुआ है, ऐसे भाव में वो पुकारते हुए घूमते थे। तो कहते हैं कि एक दिन ना, उनके अनेक कथाएं आती हैं, दो अलग अलग प्रकार की, एक कथा ऐसी आती है कि वो एक दिन ऐसे पुकारते पुकारते जमुना में गिर गए वो, फिर भी उनको भान नहीं, पुकार ही रहे, जमुना में गिर गए, डूब रहे, तो उस समय गोपीनाथ जी जमुना जी के जल के अंदर प्रकट हो गए और उनको पकड़ा उन्होंने और जल के बाहर लेके आए उनको, तब उनको होश आया। तो गोपीनाथ का दर्शन करके एकदम भाव विभोर हो गए, अश्रु बहाने लगे, बेहोश ऐसे हो गए, गदगद हो गया कंठ उनका, रोमांच खड़े हो गए। गोपीनाथ जी हंस रहे हैं, मुरली बजा रहे हैं। तो फिर जब थोड़ा होश संभाला तो उन्होंने कहा कि ठाकुर जी क्या सेवा करें आपकी, आप बताइए। बोले बोले यही स्थापन करो, तभी तो वो व्यक्ति रूप में, मतलब जीवित क्या कहते हैं उसको, चलायमान रूप में थे वो, है ना। तो फिर वो डीडी बन गए, मूर्ति बन गए। मैंने कहा मैं यही रहूँगा, आप मेरी सेवा करना। तो फिर मधु पंडित के नेतृत्व में फिर बंसीवट के तले जहां पर ये विग्रह प्रकट हुए, बंसीवट के जमुना जी के अंदर ये प्रकट हुए, उन्होंने ही मधु पंडित को बाहर निकाला, उनको होश में लाया, फिर उन्होंने दर्शन दिया, बातचीत हुई उनसे, फिर वही भगवान जो चलायमान थे वो मूर्तिमान हो गए, मूर्ति रूप हो गए, और फिर मधु पंडित ने उनके लिए मंदिर बनाया। और फिर जब वो मंदिर जो गोपीनाथ जी थे, जब उनको यहाँ लाया गया तो मधु पंडित भी यहाँ पर आ गए। तो मधु पंडित जी वहां पर तुलसी के मणियों से बनाए हुए कोट पहना करते थे। हाँ, हम लोग तो खाली कंठे में पहनते हैं तुलसी, उनका पूरा टोपी भी तुलसी की और पूरा वो था ना ओवर कोट, वो भी तुलसी का है, वो अभी भी उधर संभाल कर रखा है, इतने साल से जीर्ण हो गया वो, लेकिन फिर भी है। पास जाकर जगह ना अपने तो कंठी वाला होते हैं ना, वैसे मणि है उसके अंदर पूरा, ऐसा इतना सुंदर बनाया गया है, और वो पहनते थे उसको। तो हमारे इंद्रदुनु महाराज को वो कोट उन्होंने अर्पण किया एक बार भेंट के रूप में, उन्होंने बहुत सेवा किया मंदिर में गोपीनाथ जी के यहाँ के। तो इंद्रदुनु महाराज भी इतने अच्छे भक्त हैं भगवान के, वैष्णव भक्त हैं, उन्होंने कहा कि मैं जहाँ ले जाऊँगा वहाँ पर कौन देखने को आएगा इसको, यहाँ पर सब लोग गोपीनाथ को देखने आ रहे हैं। तो अनायास ही गोपीनाथ के परम भक्त मधु पंडित का दर्शन हो रहा है, उनके दर्शन भी उनका होगा, तो आप, मैं अगर आपके पास जगह नहीं तो मैं उसके लिए अच्छी पेटी बना देता हूँ। तो वो पेटी जो दिखाया आपको ना दर्शनीय भाग में रखी है, वो पेटी हमारे परम पूज्य इंद्रदुनु महाराज ने बनाई है, फिर प्लेट बनाया, लेबल बनाया उसका, और सब लोग दर्शन कर रहे, उसको प्रिजर्व करके रखा है कि आगे जाके नष्ट भी नहीं होगा, वो जीर्ण भी टूट नहीं जाएगा, वो प्रिजर्व किया उसको, ताकि आने वाली सैकड़ों साल जनता आके मधु पंडित का याद करेंगे, कैसे भी भक्त थे मधु पंडित महाशय। तो ये जो गोपीनाथ जी हैं, ये प्रयोजन हाँ। और एक कहानी उनकी ऐसी है जो गुरुदेव बताते हैं, वो ये है कि मधु पंडित तो आए थे ढूंढते ढूंढते, लेकिन उनके एक सीनियर भक्त थे परमानंद भट्टाचार्य, उनके सामने बंसीवट पे ये गोपीनाथ जी प्रकट हो गए, अचानक अपने आप को प्रकट कर दिया, जो गुप्त हो गए थे लुप्त हो गए थे वो अचानक विग्रह से प्रकट हो गए। और फिर परमानंद गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार मधु पंडित को उनको दे दिए, और फिर मधु पंडित ने उनका सेवा करना शुरू किया, ऐसी भी कथा आती है। दोनों कथाएं सच है, उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। पॉइंट इज दैट, मुख्य मुद्दा क्या है कि भक्त जब हृदय से भगवान को पुकारता है तो अदृश्य भगवान भी प्रकट हो जाते हैं, ये हमारे समझने के लिए पॉइंट ये है, वो चर्चा का या आर्गुमेंट का विषय नहीं है। जब भी भक्त भगवान के विरह में व्याकुल हो जाते हैं और व्याकुल होकर उनको पुकारते हैं, तो अदृश्य होने पर भी भगवान दृश्य रूप में उनको दर्शन देते हैं और उनको सेवा देते हैं। तो ऐसे भक्तों का चरित्र हमको सुनना चाहिए, अरे हम भी पुकारते हैं कौन दर्शन देता है हमको, पुकारते रह जाते हैं कुछ नहीं होता है, एक पत्ता भी हिलता नहीं है हमारी पुकार से। लेकिन ऐसे भक्त हुए हैं जो भगवान को ऐसे पुकारते हैं कि उनके पुकार से भगवान भी पिघल जाते हैं, केवल आते नहीं है पिघल जाते हैं। जैसे रूप गोस्वामी गए तो भगवान का हृदय पिघल गया, बोले बस बस अभी और नम्रता मुझे सहन नहीं हो रही है, बस करो अभी आप, दैन्य छाड़ छाड़ दैन्य तुम्हार थैन्य दाड़, मतलब दैन्य को छोड़ दो अभी आप, बस हो गया, इतना दैन्य इतने नम्रता जो भगवान भी उसको सहन नहीं कर पा रहे, इतनी दैन्य भगवान के भक्तों के बीच में होती है कि भगवान भी भाव विभोर हो जाते हैं। और ऐसे भक्तों का चरित्र जो है वो हमको हमेशा सुनना चाहिए, तो कुछ सद्गुण हमारे अंदर प्रकाशित हो सकते हैं। नहीं तो हम क्या सुनते हैं, कोई फिल्म स्टार, कोई पॉलिटिशियन, कोई ये, कोई हीरोइन, कोई ये इसका उसका सब देखते रहते, कोई अमीर आदमी गांव का कौन है, बड़ी प्रॉपर्टी किसके पास में है, किसके पास में बंगले हैं, किसके पास में राज्य है, परगना है, मालिक है, इनकी कथा सुनते रहते हैं। शराब पीता था वो, माइकल जैक्सन का कहानी सुनते ना, कितना नशा करता था, अकेले बेड पे रहता था, उधर जाके मर गया एक दिन, उसको ड्रग कर दिया लोगों ने, मार दिया, ये सब ये कथाएं सुनते क्या मिलने वाला है हमको, नेपोलियन सिकंदर ये सब कथाएं सुन के क्या फायदा है, केवल भोग की कथाएं, ये दुनिया का भोग कैसे लिया जाए, अधिक से अधिक चीज अपना कैसे बनाया जाए, जो अपना नहीं है वो अपने नाम पे कैसे किया जाए, उसका भोग कैसे किया जाए, और मरते वक्त सब कुछ छोड़ के कैसे जाना है, ये कहानी है सब कुछ। लेकिन भक्त भगवान के भक्तों की जब कहानी सुनते हैं तो क्या देखते हैं कि इन्होंने कभी भी दुनिया में कोई अपनी चीज नहीं बनाई, जो भी अपनी थी वैसे भी वो भी भगवान को अर्पण कर दी, जीवन तक अर्पण कर दिया, मन तक अर्पण किया, बुद्धि भावना सब कुछ अर्पण कर दिया, और भगवान उनके हो गए, भगवान उनको लेकर अपने धाम में ले गए, अपने चरणों में रखा भगवान ने उनको, और खुद भगवान उनके दास बने। देखो भगवान को क्या जरूरत है, कोई बोल रहा है कोई पागल आदमी पुकार रहा है और जमुना में गिर गया, देखता नहीं कि उसको जमुना आ रही है, उसको देखना चाहिए था, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं, भगवान खुद जमीन के पानी के अंदर प्रकट हो गए, हम उसको पकड़ा हाँ बाहर लेके आए उसको, इतना प्रेम रहेगा उसके हृदय में, तभी तो आए ना वो। प्रहलाद जी को फेंक दिया पहाड़ से, प्रहलाद जी बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गोविंद हरि गोपाल हरि पुकार रहे हैं उसको, भगवान नीचे जाके उसको पकड़ रहे हैं फूल की तरह गद्दी में ऐसे पकड़ रहे हैं, वो उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है, तो भगवान के नाम में मुझने विष भी दिया उसको, क्या सांपों के बीच में फेंक दिया उसको, क्या क्या किया। उसके बाद में भगवान प्रकट हुए, बोलते भगवान बोलते हैं प्रहलाद तुमने कितना कष्ट सहन किया मेरे लिए, मेरे लिए सब कुछ, अगर एक बार बोलते यस पापा तो सब कुछ खत्म हो जाता है ना, क्या बोलने का जरूरत था हिरण्यकश्यप को, यस पापा जो बोलेंगे वैसा करेंगे आप चिंता मत करना, सारा आतंक खत्म हो जाता एक क्षण के अंदर। लेकिन यस पापा नहीं बोला, यस भगवान मेरे लिए यस बोलते रहे आप हमेशा, इसलिए इतना अपने कष्ट सहन किया। ऐसे भगवान अपने भक्त को दर्शन देने के बाद बोल रहे हैं, और प्रहलाद जी क्या बोल रहे हैं, किधर कष्ट, कोई कष्ट तो हुआ ही नहीं, और कैसे नहीं हुआ, देखो जब मुझे सांप के डाला गया विषैले में तो सांप ने मुझे काटा ही नहीं, मैंने कहा कष्ट सहन किया, मुझे विष दिया गया तो विष मुझ पर चला ही नहीं, परिणाम ही नहीं हुआ उसका। हाथी के पैर के नीचे दिया गया, हाथी ने पैर उठाया लेकिन पैर रखा ही नहीं मेरे ऊपर, परमात्मा रूप ने आपने हाथी को आदेश दिया अंदर से पैर मत रखो उसके ऊपर क्या क्या किया, और शस्त्र चलाया, शस्त्र भी चला नहीं, मैंने क्या किया, मैंने तो खाली आपका नाम लिया, बाकी सब चमत्कार तो आपने ही करा दिया सब कुछ। भगवान क्या सोच रहे हैं, भक्त क्या सोच रहे हैं, देखो इसी को भक्ति कहते हैं, भक्ति मतलब यही सोच विचार धारणा जो है ना उसको भक्ति कहते हैं। हम तिलक लगाते सब अच्छा है, ड्रेस पहनते हैं वैष्णव व्रत जरूरी है करना चाहिए, सब शिष्टाचार पालन करना चाहिए, लेकिन उसका परिणाम विचार धारणा में चेंज होना, ये विचार उसका परिणाम होना चाहिए। जब विचार धारणा कृष्ण भावना की हो जाएगी ना तब जीवन सफल हो जाएगा, ऐसे अनंत भक्तों का भागवत में वर्णन। इसलिए हमको नित्यम भागवत सेवया, रोज भागवत का श्रवण करना चाहिए, ताकि ऐसे भक्तों का चरित्र का परिचय हो जाए और कुछ कुछ प्रेरणा मिले कि ऐसे भक्तों की तरह हम भी बने और हमारे लिए भगवान कभी प्रकट हो जाए तो अच्छा ही है, जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो ऐसे मधु पंडित महाशय वो पहले वृंदावन में थे, आज उनकी समाधि वृंदावन में गोपीनाथ जी के मंदिर में है, और गोपीनाथ जी में जहाँ गोपीनाथ जी थे वहाँ प्रतिभू मूर्ति के रूप में वे दूसरी मूर्ति स्थापन की गई। अभी उसकी कहानी बताता हूँ, उसके आगे जो कहानी मैंने बीच में मिस्टेक किया था वो ये है कि जानवा देवी जब आई थी तब वो अक्रूर घाट पे उन्होंने भक्तों से मीटिंग किया, राधा कुंड पे रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ में मीटिंग किया, कई दिन वहाँ पर रहे, दास गोस्वामी तो गौर लीला सुनाते थे, उधर श्रवण किया उन्होंने, फिर वृंदावन में आए गोस्वामी उनसे मिले वो, और जानवा देवी ने बहुत सभी गोस्वामी के सातों मंदिरों में जा जाकर अपने हाथ से भोग बनाए, एक एक नहीं सैकड़ों भोग बनाए और भोग भगवान को अर्पण किए, और वो फिर गोपीनाथ में मंदिर में चली गई तो गोपीनाथ दर्शन कर रही थी एक बार शयन में, तो उनके मन में विचार आया कि राधा रानी बहुत छोटी है, तो उस दिन राधा रानी उनको स्वप्न दिया, उन्होंने कहा कि यस आपको जो गलत लग रहा था आपके मन में विचार आ रहा है वो सही है, मुझे भी लग रहा है कि मेरा विग्रह बहुत छोटा है, बगरा बड़ा विग्रह होना चाहिए। तो जयसिंह जी ने फिर विग्रह भेजा और वो विग्रह बड़ा राधा रानी का विग्रह जो है वो गोपीनाथ के बाएं अंग में रखा गया और जो छोटा विग्रह था उसको दाहिने अंग में रखा गया। चमत्कार क्या हुआ, जब जानवा देवी का अंतर्धान होने का समय आया तो जानवा देवी उसमें प्रवेश कर गई, और एक ही ऐसे आचार्य हैं पूरे विश्व में पूरे निर्माण में पूरे इतिहास में जिनका विग्रह उनके होते हुए ही उनके नाम से पूजित होता था, दैट मीन्स दे वर वर्शिपिंग दैट स्मॉल विग्रह एज जानवा देवी इन हर ओन लाइफ ओनली। जब वो जीवित थी दुनिया में हिल डोल रही थी तभी से जब से वो उनको यहाँ रखा गया तब सब लोग जानवा देवी के रूप में उसी विग्रह का पूजा करते थे, कि पूरे इतिहास में ऐसी एक ही व्यक्ति है जिनके होते हुए उनके विग्रह का पूजा हो रही थी और उसी में जानवा देवी फिर विलीन हो गई। तो आज भी आप आज गोपीनाथ गए थे शायद, पता नहीं मुझे भाई वहाँ पर बता नहीं पाया आपको, इतना शोर था वहाँ पर। तो आज भी गोपीनाथ जी के मंदिर में राधा रानी लेफ्ट में हैं और राइट में ही छोटा विग्रह है वो जानवा देवी का विग्रह है, और वैसा ही प्रतिभू विग्रह अभी वृंदावन में भी है। आज वृंदावन में जाएंगे तो भी आपको गोपीनाथ मिलेंगे, राधा रानी मिलेगी और जानवा देवी मिलेगी। जानवा देवी ऐसी भक्त थी भगवान की, या भक्ति रत्नाकर नाम का ग्रंथ है उसको पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि वो जब चलती थी ना और जिस चीज को देखती थी उनकी नजर जिस चीज पे पड़ती थी वो सब भौतिक वासनाएं भूलकर भगवत भावना से विभोर होकर पागल हो जाते थे अति आनंद की भावना से। They used to get ecstatic symptoms, अष्ट विकार उनके शरीर में प्रकट हो जाते थे केवल इनके देखने से। उनके पति भी ऐसे ही थे नित्यानंद प्रभु, वो भी जिसको देखते थे वो ऐसे भाव विभोर हो जाते थे। नित्यानंद प्रभु ने एक बार एक चक्र धाम में ऐसे बच्चों का झुंड ऐसा सामने से आया तो खाली वो पेड़ पर बैठे थे उस समय, उधर एक पेड़ है वहाँ बैठे थे, पेड़ पर बैठकर उन्होंने वो बच्चों को देखा, इसे जो भी आप बैठे हुए उनको नित्यानंद प्रभु ने देखा तो सब लोग ऐसे धाड़ करके गिर गए। कैसे गिर गए? बेहोश नहीं हुए, प्रेम अतिरेक होकर भाव विभोर होकर वो अति आनंद में बेहोश हो गए। अष्ट विकार में लास्ट विकार जो है ना वो बेहोशी है, तो अष्ट विकार का अनुभव किया उन्होंने और वो आखिर में गिर गए। फिर नित्यानंद प्रभु ने उनके साथ में उनको जगाया, उनके साथ में नृत्य किया 90 दिन तक 24/7 उन्होंने नृत्य किया और बच्चे लोगों को ना भूख लगी ना नींद आई ना कुछ हुआ उनका ना प्यास लगी 90 डेज तक। और एंड में क्या बोलते हैं, कीर्तन बंद क्यों हो रहा है इतना जल्दी? ऐसा जो अद्भुत परिणाम है ना वो भगवान कृपा से हो सकता है। ऐसा परिणाम जानवा देवी के केवल दृष्टिपात से हुआ करता था। आप भक्ति वर्तनाकर पढ़ेंगे ना सुनकर गदगद हो जाएंगे आप, कैसे जानवा देवी थी, कितनी शक्ति थी उनके अंदर भक्ति की। नित्यानंद प्रभु के बाद में पूरे गौड़ीय वैष्णव को नेतृत्व उन्होंने किया। आज भी आप जाएंगे तो राधा कुंड में कितना समय वो रही थी, छोटा समय के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी जी के मुख से द्वारा गौर लीला का श्रवण करते हुए कुछ दिन रही थी वहाँ पर, तो वहाँ पर उनके लिए एक जगह बनाई गई है जानवा बैठक और जानवा घाट बनाया गया है, उसका जीर्णोद्धार भी अभी अभी हुआ है। वो जगह है जहाँ पर जानवा देवी राधा कुंड के किनारे पे कुछ दिन निवास किया था उन्होंने। तो जानवा देवी को प्रार्थना करनी चाहिए कि हम पर भी एक बार आप नज़र डाल दीजिए। लोग ना डरते हैं एक्चुअली, हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, थे अभी नहीं है, नाम नहीं लूंगा उनका मैं, लेकिन बताऊंगा कहानी उनका ज़रूर। उनको ना हमारा सारा सिद्धांत पता था क्योंकि बहुत दिन काम किया हमारे पास उन्होंने, सब उनको पता था जीवन का उद्देश्य क्या है और क्या करना चाहिए। वो ये जो सुन रहे हैं हम लोग यहाँ पर जो भक्ति विधान में हो रहा है सब कुछ सही है, लेकिन कभी भी वो हमारी प्रार्थना में भाग लेते नहीं थे। 10 बजे आते थे बराबर हॉस्पिटल में, लेकिन लिफ्ट के पास जब तक लिफ्ट नहीं आती है तब तक लिफ्ट की तरफ मुंह करके कान में जो पड़ता है वो सुनते थे, लिफ्ट आते ही चले जाते थे। हमने उनको कई बार यात्रा में आइए आप प्रार्थना में आइए प्रोग्राम में आइए इसमें आइए सत्संग में आइए, तो वो कभी भी आते नहीं थे। लेकिन एक दिन उन्होंने किसी और के पास में अपना मंतव्य प्रकट किया जो हमारे में से नहीं थे, उनमें से कोई मित्र थे उनके, तो उन्होंने भी सुना था कि इनको भाई डॉक्टर साहब बहुत बार बुलाते हैं लेकिन वो आते नहीं हैं, आप क्यों नहीं जाते हो? तो उन्होंने मालूम है क्या उत्तर दिया? उन्होंने उत्तर दिया कि मुझे ना डर लगता है कि मैं एक बार इनके जैसा बन गया ना तो मुझे फिर पैसा कमाने की इच्छा ही नहीं बचेगी, तो मैं क्या करूँगा लाइफ में। इतना प्रैक्टिस है, इतना इनकम हो रहा है, इतना घर है, इतना प्रॉपर्टी है, इतना इनकम हो रहा है, इतना पैसा बढ़ रहा है, वो सारा करने का मेरा जो क्या कहते हैं उसको पैशन वो ही खत्म हो जाएगा। फिर आई एम वेरी स्कैर्ड कि अगर वो खत्म हो जाएगा तो मैं करूँगा क्या। फिर उनको पता नहीं कि करने के लिए बहुत चीज़ें आ गई लेकिन वो उनको पता ही नहीं है, लेकिन वो डर क्या रहा है, अरे ये तो तकिया आप ले जाएंगे तो कैसे होगा, मैं पकड़ करता हूँ पता नहीं ये लोग आके सब ले जाएंगे तकिया मेरा। उसी तरह से पकड़ के रखे हुए सब चीज़ को कि कहीं खो ना जाए, भोग के साधन जो है ना पकड़ के रखें और डरते हैं कहीं छूट ना जाए। और हम लोग क्या बोलते हैं, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा। हम लोग ये सब छोड़कर उनका सहारा लेना चाहते हैं और उनका सहारा छूट न जाए इसके लिए भी डरते हैं, और ये लोग माया का सहारा ना छूट जाए इसलिए डरते हैं। कहीं कृष्ण का सहारा हो गया और माया छोड़ गए तो कैसे होगा जिंदगी, क्या भोगेंगे हम, ये विपरीत है सब कुछ। तो आप लोग प्रार्थना कीजिए, डरो मत, हाँ तब ये भोग नष्ट हो जाएंगे तो आप सुखी हो जाएंगे, विश्वास रखिए इस बात पर। आज भोग प्राप्त कर रहे हैं, भोग प्राप्त करने का एक ही परिणाम है दुख। भौतिक दुनिया में कोई भी चीज भोग प्राप्त करो आप, भोग प्राप्त करने का अंतिम अंजाम दुख है, निश्चित रूप से समझ लेना। एवरी एंजॉयमेंट इन द लाइफ हैज टू एंड इन मिजरी, दैट इज द नेचर ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। भौतिक दुनिया का स्वभाव है वो कि हर एक भोग को जो आपको शुरू में आनंद देता है उसको दुख में रूपांतरित होना ही है। और भक्ति का जीवन उल्टा है, शुरू शुरू में बहुत कष्ट होता है। अरे प्रभु जी बोल रहे हैं 4 बजे तैयार हो जाओ, कल मदन मुंजी जाना है, क्या है 4 बजे उठाते हैं, क्या ये सोने का समय है, गर्म पानी भी पता नहीं आने वाला कि नहीं आने वाला है, हाँ बोल 6 घंटा बस में जाने को बोल रहे हैं, क्या बम्बई में रह के आराम करते हैं, पता नहीं क्यों इधर आए, और बोल रहे ये नहीं करना है वो नहीं करना है, बाल बांधना है, धोती पहनना है, कुर्ता पहनना है, तिलक पहनना है, ऐसा नहीं करना है, लाइन में खड़ा रहना है, वैष्णव व्यवहार करना है, कितना कष्ट देते ये लोग इतना इनका यात्रा में आ रहा है, मतलब कितनी पीड़ा है ऐसा लगेगा आपको। फिर घर में जाएंगे बोलेंगे सुबह उठो मंगल आरती में जाओ, लहसुन प्याज छोड़ दो, ये छोड़ दो वो छोड़ दो, क्या है क्या। शुरू में बहुत कष्ट, साधना में बहुत कष्ट, लेकिन एक बार उसका आदत लग गया ना उसके बाद आनंद ही आनंद है। भौतिक दुनिया में शुरू में आनंद है, बाद में कष्ट ही कष्ट है। भक्ति जीवन में शुरू में थोड़ा कष्ट है, थोड़ा तपस्या, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा मन के खिलाफ काम करना पड़ता है, नींद छोड़कर उठना पड़ता है, बंधन में भागना पड़ता है, लेकिन एक बार चस्का लग गया तो उसके बाद आनंद ही आनंद है। वो इतना आनंद है कि दुखों के पहाड़ टूटने पर भी आनंद नहीं खत्म होता है। हम लोग भी चर्चा कर रहे थे कि समझो आपके दुख इतने हैं, समझो एक 3 इंच है, समझो इसको छोटा करना है आपको तो क्या करना चाहिए, इसको स्पर्श नहीं करना है आपको, इसको स्पर्श के बिना आपको उसको बड़ा छोटा करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके सामने ऐसे लंबी लाइन निकालनी पड़ेगी आपको, किसकी, आनंद की, भजन की, भक्ति की, सेवा की। वो इतना लंबा करेंगे ना तो वो जो ओरिजिनल अनचेंजेबल, हाँ जो अपरिवर्तनीय दुखों का सागर है ना, दुखों का जो मेजरमेंट है वो छोटा लगने लगेगा आपको। उसको छोटा करने के लिए आपको आनंद का लकीर बड़ा करना पड़ेगा, और वो पैदा भी करना पड़ेगा और बड़ा भी करना पड़ेगा। जब आपका आनंद का लकीर बड़ा 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 होते जाएगा तो जीवन के सारे दुख जो है वो शुद्र हो जाएंगे आपके लिए, तुच्छ हो जाएंगे। है तो उतने ही, वो अपने फुल फोर्स पे चल रहे वो, लेकिन आप उसको अपने भक्ति के आनंद के प्रभाव से तुच्छ बना रहे हैं। यही रहस्य है भक्ति का, ये गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी जो ना, ये रहस्य के जादूगर है ये, या आपके दुखों को सुख में परिवर्तन करते हैं। जो दुख देने वाली चीजें हैं वही सुख का स्रोत बन जाती हैं। वॉट एवर कैन गिव यू मिजरी दैट बिकम सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर यू। कुंती देवी क्या बोलती है, आने दो और दुख आने दो और दुख आने दो और दुख आने दो, ऐसे कुंती देवी बोलती है। तो इसलिए आप गोपीनाथ से प्रार्थना कीजिए, बिना डरे प्रार्थना कीजिए। माँ के, भगवान कहते हैं माँ शुचहा, डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, यू जस्ट सरेंडर टू मी। आप मुझे शरण में आइए, सब अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इच्छामि माँ शुचहा, डोंट वरी, सारा दुख दर्द मिटा दूंगा मैं आपका। हमको ना थोड़ा विश्वास कम है, पता नहीं ये बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं क्या, क्या एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं क्या अटेम्प्ट कर रहे हैं कि सही में कुछ है ये, पता नहीं, अपना अपना धंधा करना। जैसे डॉक्टर थे ना, डॉक्टर वो बोला जो चल रहा है वो सही है, इनके अंदर जाकर रिस्क कौन लेगा, कौन देखा है, यद गत्वांग निवर्तन्ति तद धाम परमम मम, कोई धाम ऐसा है भी कोई नहीं भी है, कौन देखा है, किसने मरने के बाद बाकी बताया कि मैं भाई भगवान के धाम में पहुंच चुका हूँ, कोई तो बताता तो नहीं है। सब लोग तड़प तड़प के मर जाते हैं, देखते तड़प के तड़प के मर रहे हैं, और ये लोग बोल रहे हैं कि हमको यद गत्वांग निवर्तन्ति वहाँ जाना है जहाँ पर ना गम भी है ना आंसू भी है, बस प्यार ही पार है सब जगह पर। वो क्या है, कविता है कि सच है क्या मालूम, इसलिए जो चल रहा है वो चलने दो, व्हाई टू टेक रिस्क। ऐसा करके दुखों की ठोकरी खाने की आदत लगी हुई है, उसी में लगे रहते हैं। क्योंकि देखो अभी वो गधा होता है ना, उसको कितनी मार पड़ती है, उसको तो क्या है, रोज का है, अभी क्या है, आज 4 पड़े कल 5 पड़ेगी, कल 3 पड़ेगी 2 पड़ेगी, 50 पड़ेगी 20 पड़ेगी, क्या फर्क पड़ता है उससे, खाना तो भाई उसको आदत लग गई है, रोज खाता है मार वो। तो वैसे माया का लत्ता प्रहार खा खा के इतनी आदत हो गई है, तो आगे भी पड़ती रहेगी तो क्या फर्क पड़ता है, 20 साल से तो खा ही रहा हूँ, अभी भी खाते रहूँगा उसमें क्या। लेकिन एक बार भक्ति का आनंद आ गया ना तो वो सब नष्ट हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी मदन मोहन स्टोरी पार्ट वन ये बताना है,